500 आने बीते थे, तो चैतन्य महाप्रभु के आने के समय से पहले चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों को भेजा, और उनके पहले पार्षद आए थे जो महाविष्णु और शंकरषण के अवतार थे। तो अद्वैताचार्य जब आए, उन्होंने देखा कि कलयुग में लोग कृष्ण भक्ति को भूलते जा रहे हैं, भगवान के संदेश को याद नहीं कर रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा में लग्न हैं, इंद्र तृप्ति में लग्न हैं। तो उन्होंने बहुत जोर से ओंकार किया था और बहुत प्रार्थना करके भगवान को बुलाया था कि आप ही आके इन लोगों का उद्धार कर सकते हैं। तो अद्वैताचार्य जी की प्रार्थना को सुनकर चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, भगवान श्री कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु ने कुछ 48 वर्ष तक इस भूतल पर लीला की, और फिर उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि पृथ्वी आदि राज्य यज्ञ नगर जनरल यज्ञ नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है ये मोरना। और जब चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला समाप्त करके चले गए, तो सारे वैष्णवगण फिर से बड़े अंधकार में चले गए बिल्कुल, कि जो चैतन्य महाप्रभु का संदेश था वो सही ढंग से उसका प्रचार नहीं हो रहा था। तो कोई भी वैष्णव उनको देखे बहुत दुख हो रहा था, और फिर सबके सब वैष्णवगण में एक बहुत परम वैष्णव दिख हुए जिनका नाम था भक्ति विनोद ठाकुर। तो सब वैष्णव भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास गए, बोले कैसे हो सकता है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की थी कि पृथ्वी के नगर 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 में ग्राम ग्राम में मेरे नाम का प्रचार होगा, लेकिन आजकल जो स्थिति देख रहे हैं बहुत ही खराब है। भक्ति विनोद ठाकुर जी के आने से पहले गोड़िया वैष्णव को एक ऐसी संप्रदाय जाना जाता है जिसे बोलते हैं सेक्स संप्रदाय, कि यहाँ पे तो केवल रामलीला की चर्चा होती है। ऐसे ऐसे सहिज्ञा आ गए थे जो कि बोलते थे कि भगवान श्री कृष्ण रामलीला करते हैं और मैं गुरु हूँ, मैं कृष्ण का प्रतिनिधि हूँ, आप मेरे सब शिष्य हैं, तो मैं आपके साथ रामलीला कर सकता हूँ। तो गोड़िया वैष्णव का मतलब ये था कि सबके सब सहिज्ञा हो रहे थे और चैतन्य महाप्रभु के संदेश को उल्टे सीधे ढंग से प्रस्तुत कर रहे थे। 13 तरह की अप्रसन्न संप्रदाय आ गई थी, साकेले की आओ खेली तरह तरह की, वो जो चैतन्य महाप्रभु के संदेश को गलत ढंग से प्रचार कर रहे थे। जब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने यह सब स्थिति देखी तो उनको बहुत दुख हुआ, उन्होंने कैसे मैं सबको दूर कर पाऊंगा, चैतन्य महाप्रभु का जो असली जो कृष्ण प्रेम बांटने आए थे वो लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मैं इस अंधकार को दूर नहीं कर सकता। तो उन्होंने भगवान से कहा कृपया करके आप एक ऐसे विष्णु की किरण को भेजें जो इस सारे अंधकार को दूर कर दे, और उस प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार किया और वो विष्णु की किरण भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभु महाराज के रूप में उनकी संतान के रूप में उत्पन्न हुई। तो उनकी चौथी संतान थी, तो वो कहलाते हैं रे ऑफ विष्णु। तो भक्ति सिद्धांत महाराज हैं, वो विष्णु की एक किरण है जिन्होंने इस अंधकार को दूर किया। और भक्ति सिद्धांत महाराज जी के इंस्ट्रक्शन पर ही श्री प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया, और श्री प्रभुपाद जी के प्रचार के कारण ही आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो हम सब के सब भक्ति सिद्धांत महाराज के प्रति कितने हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि बिना उनके अगर इंस्ट्रक्शन ना देते श्री प्रभुपाद जी को तो इस गौरवाणी का प्रचार नहीं होता और हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित होकर आज की चर्चा नहीं कर रहे होते। तो हम सबका परम कर्तव्य है कि हम अपने परम परम गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज जी के बारे में आज कुछ जाने, कुछ चर्चा करें, क्योंकि जब शुद्ध भक्त गुणगान करेंगे तो हमारा भी शुद्धिकरण होगा। तो आज हम इसका प्रयास करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी का आविर्भाव सन 1874 में जगन्नाथपुरी में हुआ, और जैसे उनका आविर्भाव हुआ जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी तो नाल काट दी जाती है, जब उनका आविर्भाव हुआ धरातल पे तो उनकी जो नाल थी पूरी की पूरी ऐसे लिपटी हुई थी जैसे कि जनेऊ होता है। तो ये कोई अद्भुत चीज थी, एक साधारण घटना नहीं थी। शुरू शुरू से बता दें कि वे एक ब्राह्मण थे, और जब उनके एक ज्योतिष ने उनके जन्म कुंडली को बनाया और देखा तो बताया कि मैंने पूरे जीवन में ऐसी जन्म कुंडली नहीं देखी है, इस जन्म कुंडली में पूरे के पूरे 32 आध्यात्मिक गुण है, और ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये बच्चा बड़ा होके इस बच्चे का आने का उद्देश्य यही है कि ये परम सत्य का खूब जोर से प्रचार करेगा। तो भविष्यवाणी शुरू से ही हो गई थी। और जब भक्ति सिद्धांत महाराज जी के वह जब 6 महीने के थे तो उस समय उनका घर था भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर जगन्नाथपुरी में था। तो वहां से एक बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली, और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली तो बिल्कुल भक्ति विनोद ठाकुर जी घर के बाहर आके वो रुक गई। बहुत कोशिश की गई कि रथ को धक्का लगाया गया लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा, 3 दिन तक रथ वहीं खड़ा रहा। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने फिर अपनी धर्म पत्नी को आदेश दिया कि आप जाके दर्शन कीजिए। तो उनकी माता ने इस बच्चे को उठाया, इस बच्चे का नाम रखा गया था विमला प्रसाद। विमला प्रसाद जी को ले गए तो उनके पुजारियों ने आज्ञा दे दी कि रथ के ऊपर चढ़ पाए। तो विमला प्रसाद जी अपने बच्चे को लेकर, उनकी माता अपने बच्चे को लेकर जगन्नाथ जी के सामने जाती हैं और जगन्नाथ जी के सामने अपने बच्चे को रखती हैं। तभी क्या होता है, कि जगन्नाथ जी के गले से बन हार निकलता है और विमला प्रसाद जी के गले के ऊपर गिरता है। और जैसी घटना सब लोग देखते हैं, सारे के सारे भक्त चलाते हैं हरी बोल, जगन्नाथ देव सुभद्रा महारानी की। तो भक्तिनाथ ठाकुर समझ आते हैं अब ये बच्चा साधारण नहीं है। जो मैंने प्रार्थना की थी कि एक विष्णु की किरण आए, तो विष्णु की किरण यही है। तो इस स्वयं जगन्नाथ जी ने अपना प्रसाद दिया और तभी इनका नाम भी विमला प्रसाद रखा गया। अगर हम जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो आप देखेंगे जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है, भोग लगने के बाद फिर वहाँ पे विमला देवी जी का मंदिर है, विमला देवी जी को भोग लगता है, उसके बाद फिर वो प्रसाद आनंद बाजार में जाता है। विमला देवी जी भगवान की योग माया, विमला देवी जी को भोग लगता है, उसके बाद ये प्रसाद आनंद बाजार में जाता है। तो इस तरह से भक्तिनाथ महाराज जी का नाम भी विमला प्रसाद रखा गया। और तब से भक्तिनाथ ठाकुर जी समझ गए कि ये वही विष्णु की किरण है जो इस अंधकार को दूर करने आई है। और जब भक्तिनाथ महाराज जी 2 या 3 साल के थे तो एक बार भक्तिनाथ ठाकुर जी अपने घर में कुछ फ्रूट लेकर आए, आम। और जैसे वो आम लाए, उस बच्चे ने आम खा लिया। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी ने उनको बोला कि आज आपको ऐसे आम नहीं खाना चाहिए था, इसको पहले हमें भगवान ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। उनकी ये बात विमला प्रसाद जी को इतने दिल को छू गई कि उन्होंने उसी से प्रण ले लिया कि मैं पूरी आयु तक आम नहीं खाऊंगा। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब भी हम उनके सामने आम ले जाते थे तो कहते थे नहीं नहीं, मैं एक अपराधी हूँ, मैंने कृष्ण के प्रति अपराध किया है। देखिए एक छोटे बच्चे ने 2 साल के या 3 साल के थे आम खा लिया तो उनको ऐसा लग रहा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर लिया है और पूरे जीवन भर तक उन्होंने आम को नहीं खाया। ये उनकी डिटर्मिनेशन थी और वो सोच रहे थे कि मैंने भगवान के प्रति अपराध किया है। तो कितना कुछ हमें सीखने को मिलता है। और जब वो 7 साल के थे तो एक बार भक्तिनाथ ठाकुर जी अपने लिए भजन कुटीर बना रहे थे। तो जब घर के पीछे वो खुदाई कर रहे थे तो खुदाई करते करते उनको एक विग्रह मिला। ये विग्रह किसका था? ये विग्रह था भगवान कुरमा का। तो ये भगवान कुरमा का विग्रह भक्तिनाथ ठाकुर जी ने भक्तिनाथ महाराज जी को दिया, विमला प्रसाद जी को दिया और बताया कि कैसे इसकी पूजा करनी है। हम सब जानते हैं कि कुरमा भगवान जी का अवतार किस लिए हुआ था? समुद्र मंथन के समय। तो बताया जाता है कि कुरमा जी की, भगवान कुरमा की पूजा करने से, भगवान कुरमा जिस तरह से वो समुद्र मंथन के समय आधार बने थे, तो भगवान कुरमा की पूजा से हमें हमारी जो आध्यात्मिक आधार है हमारा वो पक्का होता है, एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन बढ़ती है भगवान कुरमा की पूजा से। तो 7 साल की आयु से ही विमला प्रसाद जी ने शुरू कर दिया था कुरमा भगवान के विग्रह की पूजा करने के लिए। और 7 साल की आयु में ही उनको सारे भगवद गीता के श्लोक याद हुए थे। भगवद गीता के श्लोक ही याद नहीं थे, उनको उनके ऊपर पूरी वो कमेंट्री दे सकते थे और केवल कमेंट्री नहीं दे सकते थे, वो किसी भी व्यक्ति से चर्चा कर सकते थे और कोई भी अगर गलत सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहा था ताकि तो उसको हरा सकते थे। कितनी मास्टरी हो गई थी 7 साल की आयु में ही भक्तिनाथ महाराज जी को। और जब वो 13 साल के हुए तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इनको एक तुलसी की माला दी और तुलसी की माला के साथ उनको बताया एक महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 13 साल की आयु से ही भक्तिनाथ महाराज जी ने हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू कर दिया तुलसी माला पे, जो कि भक्तिनाथ ठाकुर जी ने दी थी। और भक्तिनाथ ठाकुर जी ने उस समय उनको एक नरसिंह कवच का मंत्र भी दिया और वो भी उनका उसका उच्चारण उन्होंने शुरू कर दिया। यानी कि 13 साल की बाल्यावस्था में वो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू कर दिया, नरसिंह कवच का मंत्र का जप शुरू कर दिया और कुरमा भगवान की विग्रह की पूजा तो वो कर ही रहे थे। उसके बाद विमला प्रसाद जी को बताया जाता है कि बहुत ही, जैसे कहते हैं, मेधावी छात्र थे, बहुत ही छोटी धर थे, एक बार जो सुन लेते थे उनको याद रहता था। भक्तिनाथ ठाकुर जी अपने घर में कथा किया करते थे तो बड़े ध्यान से वो सुनते थे। तो सारे के सारे भक्तगण आश्चर्यचकित हो रहे थे कि इस बच्चे में भगवत कथा सुनने में इतनी रुचि क्यों है, बहुत ध्यान से सुनते थे। और एक बार कोई चीज याद हो उसको सुन लेते, उसको याद कर लेते थे। और वो स्कूल भी जाते थे लेकिन स्कूल जाके वो स्कूल की किताबें नहीं पढ़ते थे, वो पढ़ते थे किताबें भक्तिनाथ ठाकुर जी की, रोतनदास ठाकुर जी की, रावण आचार्य जी की, इन किताबों को पढ़ते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि स्कूल की किताबें नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, हमेशा नंबर 1 अव्वल रहते थे, अद्भुत छात्र थे हमेशा। और जब वो बड़े होकर कॉलेज में गए तो संस्कृत के प्रखर पंडित बन गए। उनकी लाइब्रेरी में जितनी पुस्तकें थी सबके सब उन्होंने पढ़ ली, सबके सब उनको कंठस्थ। और फिर 16 साल की आयु में ही उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का ज्योतिष शास्त्र के ऊपर सूर्य सिद्धांत लिखा। और जब उन्होंने सूर्य सिद्धांत लिखा इसलिए उनका नाम पड़ा सिद्धांत सरस्वती, उनको टाइटल मिला। 16 साल की आयु में ही उन्होंने सूर्य सिद्धांत लिख दिया ज्योतिष शास्त्र के ऊपर, तो उनको ये टाइटल मिला सिद्धांत सरस्वती का। इसके बाद वो अपने कॉलेज के सबसे अच्छे शास्त्र स्टूडेंट थे, फिर भी उन्होंने कॉलेज को बीच में छोड़ दिया। अब जानते हैं क्यों छोड़ दिया, उन्होंने पूरी ग्रेजुएशन पूरी नहीं की, हालांकि वो संस्कृत के प्रकाश पंडित थे, फिर भी उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी नहीं की। जान सकते हैं क्या कारण है कि क्यों उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की? हाँ, उनका मानना था मैं पूरा कॉलेज कर लूंगा तो फिर मेरे ऊपर सामाजिक वो पड़ेगा प्रेशर कि अब आप पढ़ लिख गए हो, अब कुछ जिम्मेवारी संभालो और शादी करो, तो वो इस जिम्मेवारी से बचना चाहते थे, तो उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ दी कि मेरे पर कोई दबाव नहीं पड़ना चाहिए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। अक्सर देखते हैं ना कि जब भी कोई फुल टाइम डिवोटी भी रहते हैं, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो घर वाले बोलते हैं इसलिए इंजीनियर बनाया था तुमने, इसलिए डॉक्टर बनाया था, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया था, तुम बने हो इंजीनियर डॉक्टर करो तो सेवा करो। इसलिए पपीता महाराज ने समझ लिया कि अगर मैं पूरी ग्रेजुएशन करूंगा तो ये मेरे पर दबाव पड़ेगा, हमें इनकी कॉपी नहीं करनी है। लेकिन उन्होंने बीच में ही एजुकेशन छोड़ दी। और फिर जब उन्होंने अपने कॉलेज में एक असेंबली बनाई स्टूडेंट्स के, एक सोसाइटी बनाई, और उस सोसाइटी में जो अंदर आने की एक कंडीशन थी उसमें यह था कि उस सोसाइटी का वही मेंबर बन जाएगा जो कि आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने की शपथ लेगा। तो बहुत से लोगों ने शपथ ली लेकिन कोई भी शपथ को पूरा नहीं कर पाया, केवल निर्मला प्रसाद जी उसको पूरा कर पाए। तो ये बचपन से उनके अंदर इतनी प्रगाढ़ होती कि मुझे केवल कृष्ण की सेवा करनी है, बस यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो मैं जो कृष्ण की सेवा में जो मेरे प्रतिकूल होंगे, ये भौतिक ज्ञान अगर मैंने पूरा कर लिया तो ये मेरे कृष्ण की सेवा में प्रतिकूल हो जाएगा। तो उन्होंने भौतिक ज्ञान जो एजुकेशन को भी बीच में छोड़ दिया और पूरी की पूरी असेंबली बनाई कि जिसमें सारे ब्रह्मचारी इकट्ठे हों, सब इकट्ठे तो हो गए, बहुत कम लोग उसको आगे कंटिन्यू कर पाए, लेकिन विमला प्रसाद जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। तो ये इनका बचपन का था। इसके बाद जब इतने बड़े स्कॉलर हो गए, इनको सारे सब शास्त्रों का, इनको बोला जाता है वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया आप समझते हैं, बिल्कुल हर आप किसी भी विषय में चर्चा शुरू करेंगे भक्ति सिद्धांत महाराज उस पर चर्चा तुरंत शुरू कर सकते थे। और उस समय वो ऐसी इंग्लिश बोलते थे कि बड़े बड़े अंग्रेजों की इंग्लिश को समझने के लिए उनको डिक्शनरी खोलनी पड़ती थी, इतनी मुश्किल इंग्लिश का प्रयोग करते थे, इतनी कम आयु में इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर जी के गुरु थे जगन्नाथ बाबा जी, ये वृंदावन से नवद्वीप में आए, तो जब इन्होंने देखा कि ये बच्चा इतना मेधावी है और इसमें इतना ज्ञान है, तो उन्होंने उसको आज्ञा दी कि आप क्यों नहीं एक वैष्णव कैलेंडर बनाते हैं। आजकल हम वैष्णव कैलेंडर देखते हैं ना, सब वैष्णव का आविर्भाव तिरोभाव और सब क्या क्या उत्सव है, तो इसकी शुरुआत जगन्नाथ बाबा जी के कहने पर भक्ति विनोद महाराज जी ने शुरू की थी और वो परंपरा अभी तक चलती आ रही है। तो भक्ति विनोद महाराज जी ने पहली बार वैष्णव कैलेंडर बनाया और वो परंपरा आज भी चलती आ रही है। इसके बाद भक्ति विनोद महाराज जी ने 1905 में ये दृढ़ व्रत लिया कि मैं कम से कम 1 करोड़ नामों का जप करूंगा। 1 करोड़ नाम का जप करने के लिए वो मायापुर में गए और मायापुर में वो 9 साल तक रहे और उन्होंने कैलकुलेट किया कि 9 साल तक मैं अगर करूंगा प्रतिदिन मुझे 192 माला, हरिदास ठाकुर जी के परम चिन्ह पर चलते हुए उन्होंने 3 लाख नाम अगर रोज लूंगा तब जाके 9 साल में मेरा 1 करोड़ नाम होगा। तो पूरा 9 साल तक उन्होंने भजन किया, खूब तीव्र भजन किया। और बताया जाता है कि 9 साल में जब चतुर्मासी उन्होंने रखे तो चतुर्मासी के समय वो केवल जमीन पे सोते थे, वहां कुछ किसी चटाई का प्रयोग नहीं करते थे, किसी सराहने का इस्तेमाल नहीं करते थे और दिन में एक बार ही खाते थे खिचड़ी। और आपको मालूम है खिचड़ी कैसे खाते थे? खिचड़ी खाते समय वो अपने दोनों हाथों को पीछे रखते थे और जैसे गाय खिचड़ी खाती है, वो किसी प्लेट पे खिचड़ी रखते थे, जमीन पर खिचड़ी रखते थे और गाय की तरह उस खिचड़ी को खाते थे। इतनी घोर तपस्या उन्होंने 9 साल तक मायापुर में की। और इससे पहले सन 1900 में गौर किशोरदास बाबा जी, एक और परम वैष्णव, वृंदावन से आते हैं नवद्वीप में। गौर किशोरदास बाबा जी भगवतदास बाबा जी के शिष्य थे और भगवतदास बाबा जी जगन्नाथ बाबा जी के शिष्य थे। और जब गौर किशोर बाबा जी आए नवद्वीप में तो उनके पास बहुत कम सामान था, उनके पास एक टोकरी थी, उस टोकरी में उनके कुछ पूजा का सामान था और उनके पास एक जो बाघ के त्वचा की एक टोपी थी, वो टोपी उनको जगन्नाथ बाबा जी ने थी, वो टोपी उन्होंने डाली हुई थी। तो जैसे ही उन्होंने भक्ति सिद्धांत विमला प्रसाद जी को देखा तो उन्होंने वो टोपी उनको दे दी और साथ में एक, जैसे आजकल हमारे पास वो तिलक लगाने के लिए स्टैंप होती है ना, वैसे एक स्टैंप दी जिसपे हरे कृष्ण राधा और कृष्ण का नाम लिखा हुआ था, तो वो स्टैंप उनको दे दी और वो टोपी दे दी। तो विमला प्रसाद जी अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि मैं गोविंद के साथ देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, और फिर उनके पिता ने उनको आदेश दिया कि आपको इनसे दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो विमला प्रसाद जी गए गोरकिशोर दास बाबा जी के पास, उनको बोला कि मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। तो गोरकिशोर दास बाबा जी भौतिक दृष्टि से बिल्कुल अनपढ़ थे, ना वो पढ़ना जानते थे ना वो लिखना जानते थे, बिल्कुल अनपढ़ थे। तो बोले अरे भाई मैं तो अनपढ़ हूँ और तुम इतने पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, मैं तुम्हें कैसे दीक्षा दे सकता, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। और अभी अपना कोई शिष्य था भी नहीं और उनको कुछ भी रुचि नहीं थी कि मैं कोई शिष्य बनाऊं। वो गोरकिशोरदास बाबा जी तो बिल्कुल भजनानंदी थे, वो तो आपको मालूम है कहाँ जाके जप करते थे, वो तो पब्लिक लैटरी में जाके जप करते थे, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो बोले क्या मैं विषय में कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा, आप पढ़े लिखे हो, इतने विद्वान हो, मैं अनपढ़ व्यक्ति क्या शिष्य बनाऊंगा, आप जाइए। लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं मैंने तो आपसे ही दीक्षा लेनी है। जब इतना उन्होंने बोला विमला प्रसाद जी ने, तो बोले ठीक है मैं महाप्रभु से पूछ के बताऊंगा आपको। बोले ठीक है। अगली बार फिर विमला प्रसाद जी उनके पास गए, बोले आप महाप्रभु से मुलाकात हुई, कहते हैं हाँ हुई। बोले ठीक है आपने मेरी दीक्षा के लिए बात की, ओहो दीक्षा के लिए तो मैं पूछना ही भूल गया। तो तब विमला प्रसाद जी बहुत उदास हो गए, बोले कृपया अगली बार जरूर पूछे। कहे ठीक है अगली बार पूछूंगा। कुछ समय के बाद फिर विमला प्रसाद जी गए उनके पास और फिर उन्होंने बोला कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या महाप्रभु से बात हुई? तो गोरकिशोर दास जी बोलते हाँ महाप्रभु से बात हुई थी। बोले क्या बोला? कहे महाप्रभु ने मना कर दिया कि मत लो दीक्षा। तो जब ये सुना कि महाप्रभु ने दीक्षा लेने के लिए मना कर दिया तो विमला प्रसाद जी बिल्कुल रो पड़े। बोले इसका मतलब मैं इतना पतित हूँ कि महाप्रभु महावदन्याय है, उनने मुझ पर भी कृपा नहीं की और आप ही मुझे इस योग समझते ही नहीं है कि मैं दीक्षा दे सकूं। तो वो बिल्कुल जोर से रो पड़े और बोले कि ऐसे जीवन का क्या फायदा जहां मुझे वैष्णव की कृपा नहीं मिलेगी, ये जीना तो बेकार का जीवन है, तो मैं तुरंत ही अपने जीवन को खत्म करता हूँ, मैं आत्महत्या करता हूँ। बिल्कुल वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। तो जब गोरकिशोरदास बाबा जी ने देखा कि इनके अंदर इतनी प्रगाढ़ रुचि है, तभी उन्होंने रोक लिया और उन्होंने उनको बोला कि ठीक है चाहिए सरस्वती नदी में स्नान करके आइए और मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। तो इस तरह से उन्होंने उनको दीक्षा दी। और बताते हैं भक्तिस्थान महाराज बाद में बताते हैं कि उनको अपने गुरुदेव पे इतनी श्रद्धा थी, इतनी श्रद्धा थी, वो कहते हैं कि अगर मैं अपने गुरुदेव के चरणों की धूली को लेकर ऐसे फेंक दूंगा और उनकी धूली की एक कण भी किसी के सर पे पड़ जाएगा तो वो निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। ये होती है गुरु शिष्य में श्रद्धा, इतनी प्रकार श्रद्धा। देखिये वो थे इतने बड़े स्कॉलर, वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, संस्कृत का ज्ञान, हर भाषा का ज्ञान, और वो थे बिल्कुल अनपढ़, लेकिन फिर भी कितनी श्रद्धा थी और कितनी दीनता के पास, दीनता के साथ उन्होंने गोरकिशोरदास बाबा जी के पास गए और उनसे दीक्षा की भीख मांगी। तो हमें सीखने को मिलता है कि शिष्य चाहे कितना भी ज्यादा शास्त्रों में प्रगाढ़ क्यों ना हो जाए, भौतिक विषय में कितना भी ज्यादा पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन गुरु के आगे वो हमेशा बेवकूफी रहना चाहिए उसको, और गुरु के ऊपर ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि इसके चरणों की धूल का एक कण भी किसी के सिर पर पड़ जाए तो वो मुक्त हो जाएगा। इस तरह से गोरकिशोरदास बाबा जी ने भक्तिस्थान महाराज जी को फिर ये शिक्षा, इनका नाम पड़ा था वाष्पानी देवी, जो आईएमएस में नाम आता है वाष्पानी देवी दायित्य, ये इनका नाम पड़ा था दीक्षा के बाद। इसके बाद 1914 में भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अपना शरीर छोड़ दिया और 1915 में गोरकिशोरदास बाबा जी ने अपना शरीर छोड़ा। इन गोरकिशोरदास बाबा ने इससे पहले एक और लीला हुई थी इनके साथ कि आप सब जानते हैं जो ब्राह्मण दीक्षित हैं वो गायत्री मंत्र जपते हैं, तो गायत्री में एक गौर गायत्री भी आती है, चैतन्य महाप्रभु के भी दो मंत्र हैं। लेकिन नवद्वीप में उस समय ये कंट्रोवर्सी हो गई थी कि गौर गायत्री की आवश्यकता नहीं है, यानी कि एक तरह से वो कह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण नहीं है, वो एक महापुरुष है, हो सकते महाभक्त हो, लेकिन वो स्वयं भगवान नहीं है। तो ये भक्तिस्थान महाराज से सहन नहीं हुआ तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और कॉन्फ्रेंस बुला के फिर सबको इकट्ठा किया और पूरे शास्त्रों के आधार पर, अथर्ववेद के आधार पर, श्रीमद् भागवतम के आधार पर उन्होंने ये बिल्कुल स्थापित कर दिया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो उस सभा में एक और वैष्णव थे जो चुपचाप सुन रहे थे और वो थे गोरकिशोरदास बाबा जी, वो किसी को पता नहीं था, चुपचाप छिपके आते थे और सुनते थे और वो सुन के इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि देखो मेरा शिष्य क्या है। तो बोलते ये है मेरे प्रभु, ये है मेरे प्रभु। भक्तिदास महाराज बोलते ये मेरे प्रभु हैं, इतना हमको प्रेम होता था कि ये मेरे प्रभु हैं। आज उन्होंने स्थापित कर दिया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, तो बड़े प्रेम से बोलते थे ये मेरे प्रभु है, ये मेरे प्रभु है, इस तरह से बोलते थे। और इससे पहले एक और घटना जो मुझे भी याद आई, तकवीर ठाकुर जी के शरीर छोड़ने से पहले 1911 में क्या हुआ कि उसमें समाज में बहुत छुआछूत का वो चल रहा था। जितने भी ब्राह्मण थे वो ये कहते थे कि जब तक आपका ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं हुआ है आपको कोई अधिकार नहीं कि आप पार्थिव ग्रह की सेवा कर सके। लेकिन सारे शास्त्रों का हम निचोड़ जानते हैं कि भगवान ने कह चुके हैं चतुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठ गुण कर्म विभाग है कि गुण और कर्मों के आधार पर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र है। लेकिन जो जात के ब्राह्मण थे उनको बहुत इससे भय लग रहा था, तो वो कह रहे थे कि नहीं केवल जिसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है वो ही भगवान की आश्रय की सेवा कर सकता है। उसके साथ साथ कुछ थे जात के गोस्वामी जो कि आश्रय की सेवा करते थे और उनको मालूम नहीं था कि क्या आश्रय क्या है। उनके आश्रय केवल एक मूर्ति के समान थे और उस मूर्ति से उनको धन की प्राप्ति होती थी, तो उनको भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था कि कोई भी शूद्र पंचातिका विधि से जनेऊ डाल के ब्राह्मण बन जाए और पूजा कर ले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, केवल जात के जो ब्राह्मण है जात के गोस्वामी है वही भगवान की अर्चना की पूजा कर सकते हैं। तो पूरे समाज में दो वर्ग थे, एक जो थे कि जात ब्राह्मणों को सपोर्ट कर रहे थे और एक वैष्णवों को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वैष्णवों का आधार बहुत कमजोर था और वैष्णवों के लीडर थे केवल भक्ति विनोद ठाकुर है। तो एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया गया मिदनापुर बंगाल में जिसमें इस पर चर्चा होनी थी कि ब्राह्मण और वैष्णव में क्या रिश्ता है और कौन श्रेष्ठ है, और सब वैष्णवों की तरफ से भक्ति विनोद ठाकुर जी को जाना था। लेकिन जैसे ही वो सम्मेलन की तिथि नजदीक आई भक्ति विनोद ठाकुर जी बीमार पड़ गए और वो सम्मेलन में नहीं जा सके, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत ही दुखी हो गए। तो कह रहे कि अब वैष्णव समाज में ऐसा कोई वैष्णव नहीं है जो कि जाए और पूरा शास्त्रों के तर्क को स्थापित कर सके। तो जब भक्ति राम महाराज ने ये अपने पिता की स्थिति को देखा तो उन्होंने तुरंत एक ऐसे लिखा जिसमें ब्राह्मण और वैष्णव के ऊपर सब कुछ बताया गया और उन्होंने उसको दिखाया, और जैसे ही भक्ति ठाकुर जी ने उसको पढ़ा भक्ति ठाकुर जी बिल्कुल भाव में आ गए, बिल्कुल एक्सटैटिक हो गए, बोले बस यही हो तुम विष्णु की रे, यू आर द रे ऑफ विष्णु जिसकी मुझे आशा थी, तुम इसको पूरा स्थापित कर पाओगे कि हाँ असली वैष्णव कौन है। तो फिर भक्ति राम महाराज उस सभा में गए, तो उस समय पहले तो सब ब्राह्मणों ने बोला और ब्राह्मणों ने बोला कि केवल जात ब्राह्मण ही भगवान की पूजा कर सकते हैं, और इसके बाद वैष्णव की तरफ से भक्तिदान महाराज जी का नंबर आया। तो भक्तिदान महाराज जी ने पहले तो ब्राह्मणों का खूब गुणगान किया, शास्त्रों से बताया कि ब्राह्मण की क्या स्थिति है कि ब्राह्मण भगवान के मुख है। जब ब्राह्मणों का इतना गुणगान हुआ तो ब्राह्मण के लोग सुन गए हाँ ये तो हमारे ही दल का व्यक्ति है, तो बहुत प्रसन्न हुए। फिर धीरे 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 भक्तिदान महाराज जी आए कि ब्राह्मण है कौन, ब्राह्मण कैसे बना जाए, ब्राह्मण जन्म से नहीं होते ब्राह्मण कर्म से होते हैं। फिर उन्होंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं जाने देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा गुरु हो तारे देश, कि चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी कि हर कोई गुरु बन सकता है, किवे विप्रा किवे न्यासी शुक्र के नेरा यही कृष्ण तत्व सही गुरु होया। तो इस तरह से तरह तरह के शास्त्रों से भक्ति राम महाराज ने स्थापित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो शुक्रपुर में जन्म ना लिया हो वो वैष्णव बन सकता है, वो वैष्णव बन गया तो ब्राह्मण है ही है। तो इस तरह से जब 3 दिन तक लगातार भक्तिनाथ महाराज जी ने सारे तर्कों को प्रस्तुत किया, किसी के पास कोई जवाब नहीं रह गया, कोई जवाब नहीं, बिल्कुल सभा शांत। उसके बाद आखिर में 2 घंटे में फिर वो बोले, पूरा ओपन चैलेंज किया कि कोई भी इसको आके चैलेंज कर सकता है, किसी तरह से कोई चैलेंज नहीं। और उस सभा में स्थापित हो गया कि कोई भी व्यक्ति पंचातिका विधि का पालन करके ब्राह्मण बन सकता है। और जब सभा समाप्त हुई तो खूब लोगों ने तालियां बजाकर इनका स्वागत किया, और जब वो मंच से नीचे उतरे तो पूरी की पूरी भीड़ लग गई उनके चरणों की धूल को लेने के लिए। अब भक्ति राम महाराज तो बहुत विनम्र रहते थे, और अगर उनको कोई प्रणाम भी करता था तो वापसी में प्रणाम करते थे, वो निश्चित रूप से नहीं चाहते थे कोई भी उनके चरणों की धूल ले। लेकिन पूरी की पूरी भीड़ टूट पड़ी गिर रही है, तो जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया उसको संभालना। तो क्या किया जाए, तो उन्होंने जबरदस्ती भक्ति राम महाराज जी को उठाया और उठा के उनके पैरों को एक वॉश बेसिन में डाल दिया एक बाल्टी में पानी के साथ, और फिर उस पानी को पूरे लोगों में चनावन के रूप में बांट दिया। महाराज कुछ कर ही नहीं पाए, वो तो चाहते नहीं थे लेकिन जबरदस्ती इतने रॉयट्स हो गए थे वहां पे सबके सब टूट रहे थे कैसे उनके चन्नों के धूले, जबरदस्ती उठा के उनके चन्नों को बाल्टी में डाला गया और फिर उसको पानी को बांटा गया। तो ये है उनकी महानता। और जब फिर 1914 में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने शरीर छोड़ दिया और 1915 में गोरकिशोर ठाकुर जी ने शरीर छोड़ा, तो बिल्कुल भक्तिदान महाराज जी बिल्कुल शोक में डूब गए। और जब यहाँ श्री छोड़ा कुलीना में मायापुर के पास जगह है नदिया में गोरकिशोरदास बाबा जी ने, तो भक्तिदान महाराज जी वहां पहुंच गए। अब गोरकिशोरदास बाबा जी अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध बाबा जी थे, तो उनके शरीर को ले जाने के लिए उस क्षेत्र के सारे बाबा जी इकट्ठे हो गए, बोले हम उनके बाबा जी को ले जाएंगे, हम समाधि बनाएंगे। तो वहाँ पे पुलिस भी पहुँच गई, लड़ाई हो रही थी कि इस बाबा जी के शरीर को कौन ले जाएगा। तो तभी फतेहसंद महाराज जी वहाँ पहुंचे, बोले कि मैं ही इनका केवल एकमात्र शिष्य हूँ, इनके शरीर पे केवल मुझे ही अधिकार है। लेकिन सबके सब बाबा जी बोले, अरे तुम तो अभी सन्यासी भी नहीं हो, हम बाबा जी हैं, बिना हम बाबा जी एक बाबा जी के शरीर को ले आ सकते हैं, तुम तो अभी सन्यासी भी नहीं हो, तुम तो केवल ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा तो कोई अधिकार ही नहीं है जाने के लिए। तो फतेहसंद महाराज जी ने बोला कि जो मेरे गुरु थे वो परम वैष्णव थे, वो परम शुद्ध थे, और केवल एक शुद्ध व्यक्ति ही इनके शरीर को छू सकता है। तो उन्होंने बड़े जोर से गरज के बोला, अगर आप में से किसी ने पिछले एक साल में किसी स्त्री के साथ अवैध संबंध नहीं किया तो आपके शरीर को छू सकते हैं। एक साल बोला कोई आगे नहीं आया, मतलब पिछले छह महीने में अगर आपने किसी स्त्री के साथ अवैध संबंध नहीं किया तो आपके शरीर को छू सकते हैं, कोई आगे नहीं बढ़ा। बोले तीन महीने में अगर आपने स्त्री के साथ अवैध संबंध नहीं किया आगे छू सकते हैं, एक हफ्ते से अगर आपने कोई अवैध संबंध नहीं किया तो आगे छू सकते हैं, तीन दिन में अगर आपने कोई अवैध संबंध नहीं किया तो आगे छू सकते हैं। स्थिति देखिए, सारे के सारे उस क्षेत्र के बाबा जी लोग थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे आए। तो वहां पे एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़े थे, तो उन्होंने फतेहसंद महाराज से बोला कि आप ऐसे गरज के बोल रहे हो और कोई समझ लो जानबूझ के आ गया, कैसे मालूम करेंगे कि इसने अवैध संबंध किया है कि नहीं किया, अगर आपकी आगे हो तो मैं इन्वेस्टिगेट करूं। बोला कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे इनकी बात पे विश्वास है। लेकिन फतेहसंद महाराज की इतनी शुद्धता थी, प्योरिटी इज द फोर्स, इतने गरज के बोले थे कि किसी की हिम्मत नहीं आई कि वो आगे आए, और सारे के सारे बाबा जी पीछे हो गए। देखिए सारे के सारे बाबा जी जो थे पीछे हो गए, बोले एक परम शुद्ध व्यक्ति ही मेरे गुरु को छू सकता है। और फिर फतेहसंद महाराज जी ने अपने गुरु जी के शरीर को लिया, लेकिन फिर भी लोग रुके नहीं। बोले ये गोर बिलोज बाबा जी ने बोला था कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो पूरे नवद्वीप में मेरे शरीर को घसीटते हुए ले जाना, ताकि पूरे नवद्वीप की जो रज है मेरे शरीर पर लग जाए। तो आप इसके शरीर को ऐसे नहीं ले जाएंगे, हम सब इसके शरीर को घसीटते हुए ले जाएंगे। फतेहसंद महाराज ने बोला कि कुछ अपने बुद्धि का प्रयोग करो, ये परम वैष्णव थे, बहुत ही विनम्र थे। अरे जो मेरे गुरु का जो शरीर है, अगर स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसको उठाएंगे तो वो बड़े गर्वित महसूस करेंगे, ये कोई साधारण शरीर नहीं है। जिस तरह से हरिदास ठाकुर जी ने शरीर छोड़ा था, तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी के शरीर को उठा के बहुत ही भाव से नृत्य किया था, बोले ऐसा शरीर है, इसको ऐसे हम रगड़ के नहीं ले जाएंगे। तो फिर उन्होंने बड़े आदर पूर्वक अपने गुरुदेव के शरीर को उठाया और वहां पे समाधि की स्थापना की। फिर कुछ समय के बाद बाढ़ जब वहां पे आई तो उन्होंने पूरी की पूरी समाधि वहां से हटा के मायापुर के अंदर ले आया। अगर आप मायापुर परिक्रमा में जाएंगे तो आप वो समाधि का स्थल देखेंगे। तो इस ढंग से फतेहसंद महाराज जी ने अपने गुरुदेव की समाधि बनाई। जब ये यहाँ पे प्रक्रिया चल रही थी तो वहां पे एक कलकत्ता से एक युवा थे जिनका नाम था कुंज बिहारी विद्याभूषण। कुंज बिहारी विद्याभूषण एक पढ़े लिखे युवा थे कलकत्ता से, वो अक्सर आया करते थे गौर किशोरदास बाबा जी के प्रवचनों को सुनने के लिए। तो शरीर छोड़ने से पहले जब गौर किशोरदास बाबा जी प्रवचन दे रहे थे तो कुंज बिहारी विद्याभूषण जी ने उनसे एक प्रश्न पूछा। तो गौर किशोरदास बाबा जी ने बताऊ क्या बोला, उन्होंने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मेरे गुरुदेव आपको देंगे। बोले मेरे गुरुदेव, आपके गुरुदेव कौन है? बोले वो फतेहसंद महाराज गोस्वामी महाराज। तो गौर किशोरदास बाबा जी अपने शिष्य को बोलते थे कि ये मेरे गुरु है। तो फिर ये बात कुंज बिहारी विद्याभूषण जी ने फतेहसंद महाराज जी को बताई और ये बताया कि आप जैसे व्यक्ति को मायापुर के अंदर नहीं रहना चाहिए, आपको बाहर निकलकर प्रचार करना चाहिए। तो जब कुंज बिहारी विद्याभूषण जी ने ये बात बोली तो फतेहसंद महाराज जी को अपने गुरुदेव के आदेश याद आए, क्योंकि गुरुदेव ने यही बोला था कि तुम्हारे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है कि प्रचार करना। वो सोचे थे कि प्रचार कैसे करूं, ना मेरे पास धन है, ना कोई सामग्री है, ना मेरे पास कोई कॉन्टेक्ट है, कैसे करूंगा। तो इसी वो चिंता में थे और सोए, तो फिर उनको एक सपना आया। उस सपने में स्वयं पंच तत्व प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्विताचार्य, श्रीनिवास पंडित, गंगाधर पंडित, और उन पंच तत्व के साथ थे गौर किशोरदास बाबा जी, जगन्नाथदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, और सबके सब फतेहसंद महाराज जी को आश्वासन दे रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आप प्रचार कीजिए, पूरी की पूरी परंपरा की शक्ति आपके साथ है, आपको जो सामान चाहिए आपको मिलेगा, जो सामग्री चाहिए आपको मिलेगी, आप बस जाइए और प्रचार कीजिए। तो इस सपने के बाद उनके अंदर बहुत शक्ति आई और फिर कुछ बिहारी विद्याभूषण जो कि बाद में बने थे भक्ति तीर्थ विलास महाराज, उनकी मदद से वो फिर कलकत्ता में गए भक्ति तीर्थ विलास महाराज। तो कुछ बिहारी विद्याभूषण जी ने कलकत्ता में एक जगह का अरेंजमेंट किया जिसका एड्रेस था कोई एक अल्टाउन रोड, नंबर वन अल्टाउन रोड पे, और वहां पे उन्होंने वो पहला मंदिर था चैतन्य महाप्रभु का जो कि मायापुर से बाहर था। तो ग्राउंड फ्लोर पे चैतन्य महाप्रभु का मंदिर था, फर्स्ट फ्लोर पे ब्रह्मचारी लोग रहते थे, सेकंड फ्लोर पे कुछ ग्रस्त रहते थे और बिल्कुल छत पे भक्तिसनंद महाराज जी की कुटिया थी। तो भक्तिसनंद महाराज जी ने वहां से प्रचार शुरू किया और रोज सुबह छत पे वो भाषण दिया करते थे और फिर उन्होंने काफी लोगों को दीक्षा दी और बड़ी तीव्रता से प्रचार शुरू किया। और देखिए कि प्रचार में उन्होंने टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया। भक्तिसनंद महाराज जी का हम देखेंगे किस ढंग से उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लगाई और प्रिंटिंग प्रेस से उन्होंने रोतनदास ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य जी के पुस्तकों का प्रकाशन किया। और फिर उन्होंने एक डेली न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम रखा उन्होंने नदिया प्रकाश। तो लोग उनसे पूछते थे भाई आध्यात्मिक न्यूज़पेपर रोज की क्या आवश्यकता है। अरे बोलते हैं भाई भौतिक जगत जो कि पूरी सृष्टि का खाली एक चौथा हिस्सा है वहां पे तरह तरह के रोज आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो और बेकार की वही सड़ी खबरें पढ़ते हो और आध्यात्मिक जगत तो असीमित है, वहां तो हर क्षण एक न्यूज़पेपर आ सकता है, तो रोज का न्यूज़पेपर क्यों नहीं आता। तो नदिया प्रकाश के रूप से उन्होंने रोज का एक न्यूज़पेपर शुरू कर दिया और उन्होंने एक मैगजीन शुरू की सज्जन तोषणी। और इसके साथ साथ भक्तिसनंद महाराज जी ने उस समय डायग्रामो का प्रयोग किया। डायग्राम आप समझते हैं चलती फिरती मूर्तियां जो आज बड़े मंदिर में देखते हैं ना, रोबोट्स लगे हुए। तो उस समय उन्होंने 1918 और 17 की बात है, उस समय उन्होंने डायग्रामो का प्रयोग किया भगवदगीता के संदेश का प्रचार करने के लिए, भागवतम के संदेश का प्रचार करने के लिए। कितना मतलब कि आगे की सोचते थे। आज का हम जो यूज कर रहे हैं वो भक्तिसनंद महाराज जी ने आज से कोई 80-90 साल पहले ही शुरू कर दिया था। लोग हमें अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं ये इस्कॉन में क्या करते हैं, शोषा कर रहे हैं प्रचार के नाम पे। नहीं, ये हमारे पूरी परंपरा का मोड़ ही यही है कि भक्तिसनंद महाराज ने उस समय डायग्रामो का प्रयोग किया, प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग किया। और उस समय जब डायग्रामो का प्रयोग किया उन्होंने पूरी एग्जीबिशन लगाई तो बंगाल में उसमें अकाल पड़ा हुआ था तो बड़े बड़े न्यूज पेपर ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि इतना पैसा व्यर्थ कर दिया उन्होंने, यहाँ पे खाने को लोगों के पास अनाज नहीं है और ये बड़ी बड़ी मूर्तियां बना के क्या संदेश दे रहे हैं भगवदगीता का, ये भूखे को पहले खाना चाहिए, भगवदगीता का संदेश चाहिए। लेकिन जैसे आजकल भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि सुनामी में और ये सब क्या करते हैं, भक्तिसनंद महाराज को शास्त्रों का पूरा निचोड़ मालूम था कि नहीं ये परम आवश्यक है, भगवदगीता का संदेश हर हालत में आवश्यक है। और इससे पहले प्रचार शुरू करने से पहले भक्तिसनंद महाराज जी ने संन्यास लिया था। अब संन्यास किससे लें? संन्यास या तो हम अपने गुरु से ले सकते हैं और गुरु उपस्थित नहीं है तो अपने गुरु भाइयों से ले सकते हैं। अब गोरक्षनाथ बाबा जी 1915 में पहले शरीर छोड़ चुके हैं और उनके केवल एक ही शिष्य थे भक्तिसनंद महाराज, वो संन्यास किससे लाते। तो 1918 में गौर पूर्णिमा के दिन उन्होंने संन्यास लिया। और कैसे लिया संन्यास? कि उन्होंने गोरक्षनाथ बाबा जी के फोटो को रखा और उस फोटो के सामने उन्होंने जो रामानुज समाचार्य संप्रदाय के अनुसार पूरा विधियों का पालन करते हुए संन्यास लिया। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको हमें रूल नहीं बनाना चाहिए कि हम भी इस ढंग से कुछ अपने आप कुछ कर ले। उस समय ना तो उनके गुरु उपस्थित थे ना ही कोई गुरु भाई उपस्थित थे और प्रचार के लिए संन्यास लेना अति आवश्यक था, तो इसलिए उन्होंने उस संन्यास को ऐसे ग्रहण किया। और इस ढंग से संन्यास लेने के बाद बड़ी तीव्रता से उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग करते हुए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए प्रचार में लग गए। और फिर आया 1922 और 1922 में आप जानते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक है। इसी कलकत्ता के एक अल्डम रोड पे छत के ऊपर संध्या के समय वो प्रवचन दे रहे थे और अभय चरण एक जो युवा थे उनके एक मित्र थे नरेंद्र, जबरदस्ती खींच के उनको लगे कि आप मैं तुम्हें एक साधु से मिलाता हूँ, कोई साधु कोई साधारण साधु नहीं है। तो अभय चरण बोला मैंने बहुत साधु देखे हैं, सबके सब ढोंगी है, मैं नहीं मिलूंगा इनसे। बोले नहीं, इस साधु में कुछ अलग बात है, आप चलो। और जैसे ही अभय चरण ऊपर गए और उन्होंने जैसे ही प्रणाम किया, प्रणाम करके भी उठ ही रहे हैं, भक्तिसनंद महाराज क्या बोलते हैं कि तुम एक पढ़े लिखे युवक हो, क्यों नहीं तुम चैतन्य महाप्रभु के संदेश को इंग्लिश भाषा में पूरे विश्व में प्रचार करते। तो अभय चरण जी बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैं तो सुन के एकदम स्तब्ध हो गया कि अभी तो मैंने प्रणाम भी नहीं किया और मुझे पहले ही मीटिंग में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मुझे अपने जीवन का लक्ष्य बता रहे हैं। और उस समय अभय चरण बिल्कुल गांधी जी के मूवमेंट में भाग लेते थे। तो मतलब क्या बात कर रहे हो, भारत तो अभी परतंत्र देश है, आज समय हमारे जो प्रायोरिटी है कि भारत को आजाद कराना। तो भक्तिसनंद महाराज ने बोला कि भारत परतंत्र हो या स्वतंत्र, हर स्थिति में कृष्णा कॉन्शियसनेस ही सोल्यूशन है। आज पूरे विश्व भर में सारी समस्याओं का एक ही कारण है कि कृष्णा भाना भावित का अभाव है और सारी समस्या का एक ही समाधान है कि सबको हमने कृष्णा भाना भावित बनाना है। तो बहुत ही अर्जेंट नीड है, ये वेट नहीं कर सकता, हर हालत में इसका प्रचार होना ही चाहिए। तो जब अभयचरण जी ने ये सुना तो कहते कि पहली बार मुझे लगा कि मैं जीवन में हारा हूँ, और अंदर ही अंदर से उन्होंने भक्तिनाथ महाराज जी को गुरु के रूप में धारण कर लिया। उसके बाद श्रील प्रभुपाद अपने काम के कारण से चले गए इलाहाबाद, और 1922 से फिर 1932 के आसपास भक्तिनाथ महाराज जी ने ब्रज मंडल परिक्रमा की। बड़े हजारों शिष्यों के साथ वो ब्रज मंडल परिक्रमा कर रहे थे, और ब्रज मंडल परिक्रमा जैसे हम देखते हैं नदी परिक्रमा या फिर हम ब्रज मंडल परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही उस समय टेंट होते थे और सारे के सारे कुक साथ में जाते थे। एक जगह जब सब प्रसाद बना, लीला थली गई, फिर दूसरे लीला थली में पूरा पूरा टेंट शिफ्ट हुआ। ये सिस्टम तभी से चला आ रहा है। लेकिन जब भक्तिनाथ महाराज वृंदावन में आए, और क्योंकि इन्होंने बताया था कि कोई भी शुद्ध ब्राह्मण बन सकता है और भगवान की सेवा शुरू कर सकता है, तो सारे के सारे जात ब्राह्मणों ने उनका बहुत विरोध किया। तो वृंदावन में जैसे ही अंदर आए कि सबके सब मंदिरों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, किसी ने उनको आज्ञा नहीं दी कि वो दर्शन कर सके। केवल एक मंदिर के दरवाजे खुले थे, कौन सा मंदिर? राधा रमन जी का मंदिर। राधा रमन जी के मंदिर था जिन्होंने इनको आज्ञा दी कि वो अंदर आके दर्शन कर पाए, बाकी किसी ने भी इनको आज्ञा नहीं दी कि वो दर्शन कर पाए। यहाँ तक श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री प्रभुपाद जी को भक्तिनाथ महाराज जी ने बताया था कि लोगों ने मुझे मारने की भी योजना बनाई थी। एक पुलिस इंस्पेक्टर आए थे इनके पास, वो कहे थे कि आपके कुछ विरोधी दलों ने मुझे 25,000 रुपए रिश्वत दी है कि आपका वो वध करने वाले हैं। क्या अक्सर तो हम पुलिस वाले खाते रहते हैं रिश्वत, लेकिन एक साधु का वध होने वाला है हमसे सहन नहीं होता, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो 1932 में श्रील प्रभुपाद जी जब ब्रज मंडल परिक्रमा चल रही थी तो कोसी में जाके भक्तिनाथ महाराज जी से मिले। तो कोसी में जब शाम को सब परिक्रमा समाप्त हो गई तो एक कैंप के अंदर बैठे हुए थे, तो तभी आके किसी ने अनाउंसमेंट की कि साथ में ही श्रेया श्री विष्णु जी का मंदिर है, तो कुछ भक्त लोग उस विष्णु के मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, और साथ में ही हमारे गुरुदेव का प्रवचन भी है भक्तिनाथ महाराज जी का। तो जिन भक्तों को प्रवचन सुनना है प्रवचन सुन लें, जिनको विष्णु मंदिर के दर्शन करने हैं दर्शन के लिए चले। तो अधिकतर भक्त तो कहाँ चले गए? मंदिर के दर्शन करिए। बहुत ही गिने चुने भक्त बच गए भक्तिनाथ महाराज जी के कैंप में बैठ के सुन रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं उसमें कि भक्तिनाथ महाराज जी किए जा रहे हैं प्रवचन किए जा रहे हैं, और वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि मुझे बहुत कम बातें समझ में आ रही हैं, और धीरे धीरे लोग उठ के जा भी रहे हैं, लेकिन अभय चरण वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। उन्होंने कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन क्योंकि मुखारविंद से ऐसा कुछ लग रहा था, सुनने को अच्छा लग रहा था कि मैं वहीं बैठा हूँ। इतनी अच्छी वाइब्रेशन थी कि मैं मेरे मन ही नहीं कर रहा था कि मैं वहां से उठूं, तो वो वहां बैठे। ये बात है 1932 की। फिर एक महीने के बाद भक्तिनाथ महाराज जी वहां आते हैं इलाहाबाद। तो इलाहाबाद के जो प्रेसिडेंट हैं तो वो रिकमेंड करते हैं अभय चरण जी का नाम कि ये बहुत अच्छे भक्त हैं, सेवा करते हैं, इनको आप दीक्षा दीजिए। तो जैसे भक्तिनाथ महाराज जी ने देखा, बोले हाँ ही इज अ गुड बॉय, ही लाइक्स टू लिसन, इनको सुनना अच्छा लगता है, मैं निश्चित रूप से इनको दीक्षा दूंगा। तो एक साथ उनको हरि नाम और ब्राह्मण दीक्षा दी गई, और उनका नाम रखा गया अभय चरणारविंद। इसके बाद श्री प्रभुपाद अभय चरणारविंद बॉम्बे चले गए, और बॉम्बे में इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। और बॉम्बे में भी प्रभुपाद भक्तिनाथ महाराज जी को मंदिर बनाना चाहते थे, तो उन्होंने अपने दो शिष्यों को भेजा, भक्ति शारंग महाराज और भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज। तो श्री प्रभुपाद जी ने भक्ति शारंग महाराज और भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज की खूब मदद की फंड्स के कलेक्शन में। श्री प्रभुपाद के बिजनेस कॉन्टेक्ट होते थे, तो ये दोनों सन्यासी वहां जाते थे, कीर्तन करते थे और फंड इकट्ठे करते थे, और ऐसे करते करते इन्होंने वहां पे एक सेंटर बना दिया। और जब सेंटर बनाया तो भक्तिनाथ महाराज जी वहां पे आए। तो भक्तिनाथ महाराज जब वहां पे आते हैं तो भक्ति शारंग महाराज उनको बोलते हैं, अपने गुरुदेव को यानी भक्तिनाथ महाराज जी को कहते हैं कि अभय चरणारविंद बहुत अच्छे प्रचारक हैं, आप इनको क्यों नहीं आके देते कि बॉम्बे टेम्पल के प्रेसिडेंट बन जाए। तो आपको मालूम है इनको क्या जवाब दिया था भक्तिनाथ महाराज जी ने? याद है आपको? भक्तिनाथ महाराज ने बोला था लेट हिम बी हियर, इनको जहां रहना रहने दीजिए, एक समय आएगा कि ये अपने आप अंदर आएंगे, अभी इनको अलग ही रहने दो। तो देखिए भक्तिनाथ महाराज जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो बोला अभी रहने दो, जब आना होगा ये आ जाएंगे, अभी इनको मत छुओ। तो ये बात है कोई 1932 के आसपास की। उसके बाद 1933 में भक्तिनाथ महाराज जी ने नवदीप परिक्रमा की, और नवदीप परिक्रमा में भी उनको बहुत जिसे कहते हैं विरोध सहना पड़ा इसी बात पे कि जात ब्राह्मणों ने कैसे ये किसी भी शूद्र को ब्राह्मण बना सकते हैं। तो जात ब्राह्मणों ने बड़े से गुंडों को गिरोह इकट्ठा कर लिया, और जब ये नदी के बीच में से निकले उन सब गुंडों ने पूरे के पूरे भक्तिनाथ महाराज की पार्टी के ऊपर पथराव किया, पत्थर फेंके, थूके, पानी फेंका, कीचड़ फेंका, लेकिन ये बिल्कुल सहते रहे और कीर्तन करते हुए बीच में से ये नदी के बीच में से निकले। ये दिखाता है कि भक्तिनाथ महाराज जी ने कितना विरोध सहा, एक सत्य को मार्ग को सहने के लिए कितना इन्होंने विरोध सहा। और फिर इन्होंने अपने समय में 64 गौड़िया मठों की स्थापना की और 108 पाद पीठों की स्थापना की। पाद पीठ मतलब की जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए वहाँ पर उन्होंने चरण स्थान चरण चिन्हों की स्थापना की, जैसे वाराणसी, अलाहाबाद, श्रीरंगम में जाकर जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए वहाँ पर उन्होंने इसकी स्थापना की। फिर उन्होंने एक चैतन्य मठ की स्थापना की मद्रास में, और मद्रास में भक्तिविनोद महाराज ने सोचा कि अब समय आ गया है कि विदेशों में प्रचार करना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश था कि पृथ्वी आते आते नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार हरि में मोरना, क्योंकि भारत तक ये संदेश नहीं रहना चाहिए, जगह जगह इसको जाना चाहिए। और 1896 में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य किताब की कई कॉपियां कराई और विदेशों की लाइब्रेरियों में भेजी। आप देखिए हमारी परंपरा का क्या मूड है। भक्ति विनोद ठाकुर जी 1896 में प्रचार कर रहे हैं टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य किताब के, विदेशों की लाइब्रेरियों में लगा रहे हैं, और 1933 में और 34 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज सोच रहे हैं कैसे विदेशों में प्रचार किया जाए। वो ये नहीं सोचा कि भारत को आजाद कराना है, और फिर उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा जर्मनी और लंदन। तो उनके तीन शिष्य गए थे वहां पे, उसमें एक थे भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी के शिष्य थे, उन्होंने संन्यास भक्ति सिद्धांत महाराज से लिया था, और दूसरे थे भक्ति हृदय पवन महाराज, और तीसरे एक थे जो बड़े स्कॉलर थे वो थे सविदानंद प्रभु। तो इन सबको जब उन्होंने लंदन में भेजा तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने इनको शिक्षाएं दी, बोले आप सब जा रहे पाश्चात्य देशों में और प्रचार करने के लिए मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, इनको आपका पालन करना पड़ेगा। तो मतलब सबसे पहले आप अगर चार नियमों का पालन करोगे, चार नियमों को अपने जीवन में उतार लोगे, तो निश्चित रूप से आपका प्रचार सफल होगा। वो चार नियम क्या थे? नहीं, वो चार नियम ये नहीं है, वो चार नियम है त्रिनाथ अपि सुनिचे तरोर अपि सहिष्णुना अमान्य ना मान देन कीर्तनीय सदा हरी। त्रिनाथ अपि सुनिचे कि तुम्हें तिनके से भी ज्यादा विनम्र होना है, तरोर अपि सहिष्णुना पेड़ से भी ज्यादा अधिक सहनशील होना है, अमान्य ना मान देन मान की इच्छा ना करते हुए सबको मान देना है। बोले अगर इन चार नियमों को अपने जीवन में तुम उतारोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा प्रचार सफल होगा, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने बताया प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जी ने प्रचार की कुछ टेक्निक्स बताई थी, उन्होंने कहा कि आपने प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जी के हिसाब से प्रचार करना है। वो क्या है कि जब आपको किसी के पास जाना है और उससे निवेदन करना है कि तुम हरि नाम लो, तो कैसे करना है? अपने दांतों के बीच में घास के तिनके को रखकर उससे निवेदन करना है, यानी बहुत ही विनम्र होकर किसी से बोलना है कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र का नाम हो। और तीसरा, तुम पाश्चात्य देश में जा रहे हो, पाश्चात्य देश में तकनीकी दृष्टि से बहुत ही वो एडवांस है, लेकिन तुम्हें उससे लोभित नहीं होना, तुम्हें उनसे आकर्षित नहीं होना, तुमने उनको अपने प्रति आकर्षित करना है, ना कि तुम उनके प्रति आकर्षित हो जाओ। तो इन तीन चीजों का उन्होंने संदेश दिया, और एक भक्कण गए वहां पे, और उन्होंने वहां जाके वहां के लंदन में गए, वहां लंदन के राजा से मिले, वहां की क्वीन से मिले, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। फिर इन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने भक्ति शरण महाराज जी को भेजा कि तुम जाओ कुछ प्रचार में जोरी से करो, और भक्ति शरण महाराज वहां के मिले लॉर्ड जैकलिन से, और लॉर्ड जैकलिन बड़े इम्प्रेस हुए, और लॉर्ड जैकलिन ने भक्ति शरण महाराज से पूछा कि आप डायरी ब्राह्मण बन सकता हूँ आपकी तरह? उन्होंने बोला हाँ निश्चित रूप से ब्राह्मण बन सकते हो। बोला मुझे क्या करना पड़ेगा? उन्होंने बस आपको नो मेडिटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट, में हो सकता है कि लोग हमारे वैष्णव सिद्धांत की चर्चा तो करें लेकिन इनमें से कोई वैष्णव बनेगा नहीं, असंभव है। तो सबका सब उत्साह कम हो गया और कोई भी इस प्रचार नहीं कर पा, और जब से सबसे वापस आ गए। और फिर 1935 में जब भक्ति सिद्धांत महाराज जी का प्रभुपाद जी ने ऑफरिंग दी है, और वो जो पत्र लिखा उन्होंने वो पत्र पहुंचा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के पास, और जब उस पत्र को उन्होंने देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। जो भी शिष्य आता था उसको दिखाते थे, उन्होंने कहते थे कि इस लड़के ने मेरे हृदय के भाव को समझा, उसने क्या लिखा था उन्होंने बताया था कि भक्ति सिद्धांत महाराज जी केवल इसलिए आए हैं कि निर्विशेष बात का खंडन किया जाए, ये बताने के लिए कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है और एक पुरुष, और भगवान श्री कृष्ण को हम तभी प्रसन्न कर सकते हैं जब हम उनके संदेश का प्रचार करें। तो उस समय कि हाँ ये मेरे इस भाव को समझ पाया है, तो सारे भक्तों उस समय उसी समय बोले कि आपकी वही स्थिति है जो कि किसकी थी? रूप गोस्वामी जी की। हम बोलते हैं श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापित, अब ये नृत्य किस रूप गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट को समझते थे, उसी जन से अभय चरणारविंद भक्ति सिद्धांत महाराज जी के मनोभिष्ट को समझते थे। और जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही थी और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी की तरफ देखे उन्होंने एक श्लोक बोला था, वो श्लोक वही था जबकि राधा रानी जी ने कृष्ण को देखने बोला था, वो श्लोक रूप गोस्वामी जी ने लिख लिया था। तो सरू दामोदर उस समय समझ गया, अरे आपको कैसे मालूम चला चेतन महाप्रभु ये सोच रहे हैं। तो सरू दामोदर ने बोला कि आपके ऊपर चेतन महाप्रभु की विशेष कृपा है, तभी आप उनके मनोवेश को समझ पाया। इसी तरह से शिला प्रभुपाद जी के ऊपर भक्तिदान महाराज जी की विशेष कृपा थी, तभी वो उनके मनोवेश को समझ पाए। नहीं तो उनके इतने शिष्य थे वो गए लेकिन वो सही ढंग से प्रचार नहीं कर पाए। शिला प्रभुपाद जी बड़े कम समय में समझ गए कि मेरे गुरुदेव मुझसे क्या चाहते हैं। उसके बाद 1935 में भक्तिदान महाराज जी फिर से वृंदावन गए राधाकुंड। जैसे अद्वैत चरणानंद जी को मालूम चला तो वो भी वहां जाकर उनको राधाकुंड पे मिले। इस समय भक्तिदान महाराज बहुत गंभीर थे, वो कह रहे थे कि पूरे मठ में आग लग रही है। वो कह रहे थे पहले हमारा छोटा सा मंदिर था एक अल्टाउन रोड कलकत्ता, अब हमने बाग बाजार में नया मंदिर ले लिया है और बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हैं, और मुझे मालूम है इस बड़े मंदिर को बना रहे हैं भक्तों के बीच में अभी से लड़ाई शुरू हो गई कि मुझे कौन सा कमरा चाहिए, मुझे कौन सा कमरा चाहिए, कैसी कैसी सुविधाएं चाहिए। बोले मैं तो चाहता हूँ कि इस बाग बाजार के मंदिर में जो संगमरमर लगा हुआ है एक संगमरमर को बेचकर किताबें छापी जाए। और उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हारे पास कभी भी पैसा हो तो जरूर निश्चित रूप से तुम किताबें छापना। किसने बोला था? भक्तिदान महाराज जी ने अभय चरणार विंद को 1935 में कहाँ बोला था? राधाकुंड में। अब इसकी आप स्थिति देखिए, ये कोई साधारण वार्तालाप नहीं है, भक्तिदान महाराज कोई साधारण जीव नहीं है। भक्तिदान महाराज अपने स्वरूप में कमल नयन मंजरी है, और कमल नयन मंजरी बताया जाता है उनकी क्या सेवा रहती है कि राधा रानी के चरणों में जो श्रृंगार होता है ये उनकी सेवा रहती है। यानी कि भक्तिदान महाराज जी अपने स्वरूप में राधा रानी के चरणों का श्रृंगार करते हैं। और श्री प्रभुपाद जी कौन है? स्वयं राधा कृष्ण जी के सेनापति हैं। तो कमल नयन मंजरी सेनापति को क्या बोल रही है कि जब भी तुम्हारे पास पैसा आए किताबों को छापो। और कहाँ बोल रहे हैं? राधा कुंड पर, जो कि गौड़िया वैष्णव में सबसे उच्चतम स्थान। तो ये कोई साधारण वार्तालाप नहीं है, ये वार्तालाप है एक सदगुरु और सदशिष्य के बीच में, और इसके अंदर इतनी शक्ति है कि इसी वार्तालाप के आधार पर आज श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथों का प्रकाशन और वितरण खूब जोर शोर से हो रहा है। क्योंकि ये इच्छा है कमल नयन मंजरी की, जो कि राधा रानी का स्वयं श्रृंगार करती है, और ये किसको बता रहे हैं? राधा कृष्ण जी के सेनापति को बता रहे हैं। तो ये कोई साधारण वार्तालाप नहीं है, और एक किताबों को छापना और वितरण करना कोई साधारण कार्य नहीं है। इसकी आप स्थिति देखिए, राधा कुंड जो कि गौड़िया वैष्णव के सबसे उच्चतम स्थान है, वहां पे ये वार्तालाप हो रही है। और एक भगवान के दो घनिष्ठ जो भक्त हैं, अंतरंग भक्त हैं, वो इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए उन्हीं के दो अंतरंग भक्तों की चर्चा के आधार पर ही उसमें इतनी शक्ति है कि आज पूरे विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार हो पा रहा है। तो ये बात थी 1935 में। उसके बाद भक्तिदान महाराज जी का स्वास्थ्य खराब होने लगा, और सब भक्तगण समझ गए कि भक्तिदान महाराज जी शीघ्र लीला समाप्त करने वाले हैं। तो 1936 में शिला प्रभुपाद जी ने भक्तिदान जी ने उस समय एक पत्र लिखा भक्तिदान महाराज जी को कि मैं तो एक गृहस्थ हूँ और आपके तो बहुत से कर्मचारी शिष्य हैं, सन्यासी शिष्य हैं, वो निरंतर आपकी सेवा करते रहते हैं, मैं तो आपकी कुछ सेवा नहीं कर सकता, कृपया करके मुझे बताइए हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। तो उनको एक जवाब आया, और उस जवाब में वही इंस्ट्रक्शन थी जो कि 1922 में भक्तिदान महाराज जी ने दी थी कि आप पूरे विश्व भर में भगवान श्री कृष्ण की वाणी का, चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार कीजिए। तो अभय चरणानंद जी को पक्का हो गया कि मेरे गुरुदेव मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं पाश्चात्य देशों में जाऊं और गौरवाणी का प्रचार करूं, और दूसरा कि चैतन्य महाप्रभु के संदेश का जितना हो सके किताबों का प्रकाशन करूं और उनका वितरण करूं। क्लियर कट उनको इंस्ट्रक्शन मिल गए। उसके बाद भक्तिदान महाराज जी का स्वास्थ्य खराब था, और बाग बाजार में उन्होंने जब लाठी लगाई उनके क्षण थे, तो उन्होंने अपने भक्तों को बोला कि ये भजन गाओ, रूप मंजरी पदा यही मेरी संपदा, कि रूप मंजरी के काल चरण कमल यही मेरी संपत्ति है। और फिर उन्होंने बोला कि अब शेषाष्टकम प्रेयर गाओ। तो जब शेषाष्टकम की प्रेयर आती है, नाम नाम कारी बहुदा निज सर्वशक्ति तत्रापिसानी मदे स्मरणे नकारा एकादशी तव कृपा भगवन ममा पितुर्देव विदशमी आचनी नाम रागा। तो भक्तिदान महाराज रुक के बोलते हैं देखो यही मेरी स्थिति है कि दुर्देव विदशमी आचनी नाम रागा, कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि भगवान के नाम के प्रति मेरे में रुचि नहीं है। ये भक्तिदान महाराज जी कह रहे हैं कितने विनम्र। और शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और बोला कि कृपया करके आप मेरे जाने के बाद आपस में लड़ाई मत करना, आपस में कोऑपरेट करना, और पुणे के जितने भी 64 मठ है इन सब को मैनेज करने के लिए जीबीसी, जीबीसी का जो कंसेप्ट है ये इस्कॉन का नहीं है, ये भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने जीबीसी की स्थापना की थी कि जीबीसी बना के मतलब मैनेजमेंट करना और बड़े प्रेम पूर्वक रहना। और फिर उन्होंने आखिरी के दिनों में बहुत से इम्पोर्टेंट निर्देश दिए, मतलब भक्ति में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है मान और प्रतिष्ठा की इच्छा, मतलब इसको कभी आगे बढ़ा देना। बोला कि दुष्ट मन तुम्हें कैसे वैष्णव प्रतिष्ठा तारे निर्जन घारे तब हरि नाम केवल कैटर, कि दुष्ट मन कैसे वैष्णव क्या दिखावा कर रहे हो, प्रतिष्ठा के लिए जाके आप दादा कुंड में बैठ के निर्जन घारे अकेले बैठ के भजन कर रहे हो, तुम्हारा जो हरि नाम है केवल कैटर, केवल दिखावा है, केवल धोखा है। उन्होंने बोला कि जब भी भक्ति में ये सबसे बड़ी बाधा है कि हमें मान की इच्छा रहती है और हम दूसरों के प्रति अपराध कर बैठते हैं, बोले कभी भी आप बिल्कुल अगर विचलित हो जाए लोगों के अंदर दोष देखकर आपको भक्ति नहीं हो रही है कि इस व्यक्ति में इतने दोष इतने कैसे भरे हुए हैं, उस समय रुक कर अपने आप को देखो, अपना अवलोकन करो कि मेरे अंदर कितने दोष भरे हुए हैं। बोले कि दूसरों के दोषों से आपको कोई हानि नहीं होगी, कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, आपको स्वयं आप खुद ही हानि पहुंचा सकते हैं, कोई किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता भक्ति मार्ग में अगर हम ही अपने सबसे बड़े विषम हुए। तो ये भक्ति नाथ महाराज जी ने अंतिम समय में प्रार्थना की और अंतिम समय में उन्होंने सबसे माफी मांगी, उन्होंने जो जितने भक्ति नाथ ठाकुर जी का भजन है वो भजन है शरणागति में कि आमार जीवन सदा पाप वरत न एक पुण्य लेश, कि मेरा जीवन तो बिल्कुल पाप में है इसमें पुण्य का एक भी लेश मात्र नहीं है, इसका वो बार बार भजन करते थे और उसे बोलते थे कि मैं बिल्कुल पापी हूँ, सबसे बड़ा अपराधी हूँ, मुझे कोई भी हक नहीं है कि मैं भक्ति कर सकूं, इस तरह के उनके भाव रहते थे और सबसे वो क्षमा मांगते थे और सबको बार बार निर्देश दे रहे थे कि कृपया करके किसी के प्रति अपराध ना करें। तो ये थे भक्ति सिद्धांत महाराज और भक्ति सिद्धांत महाराज को बोला था सिंह गुरु, सिंह के समान गश्त थे, सिंह के समान गश्त थे और मायावाद का खंडन करते थे, जात ब्राह्मणों का खंडन करते थे, लेकिन वो हृदय से बड़े कोमल थे, बहुत कोमल थे। एक बार जब वो अपने आश्रम में वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक ब्रह्मचारी छोड़ के चले गए, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि एक भक्त छोड़ के चले गए, उन्होंने तुरंत अपने दूसरे ब्रह्मचारी को भेजा, जाओ उसको पकड़ के लाओ। तो उन सब ब्रह्मचारियों को मालूम था कि इस ब्रह्मचारी के पास छोड़ के चला गया, इसके पास एक ही कला थी घड़ी ठीक करने का था, तो ये पूरे जितने भी मार्केट में जितने भी घड़ी ठीक करने की दुकान थे सबके पास गए कि उसको और कहां जाएगा पैसा करने, तो घड़ी की दुकानों में ढूंढते वो लड़का मिल गया और वो व्यक्ति भी जब भक्तों के संग से दूर था काफी दुखी था, तुरंत वो गले मिला दोबारा से उनको वो लेके आए, मतलब इतना वो ख्याल रखते थे कि मेरे जो शिष्य का ढंग का कैसे ख्याल रखा जाए। एक बार इनके आश्रम में एक फुल टाइम डिवोटी भक्त बन गए तो उसके छोटे जो के माता पिता पीछे आ गए कि हम अपने बेटे को वापस लेके जाएंगे, तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी बोला कि चिंता मत करो तुम मेरे आसन के नीचे आ जाओ। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी जिस दीवान पे बैठे हैं उसके नीचे को छिपा लिया, माँ बाप आए बोले कहाँ है हमारा बेटा, बोला आप ढूंढ लो कहीं भी आपको मिल जाए ले जाइए, तो उन्होंने पूरा ढूंढा कहीं मिला और उसके बाद माँ बाप दुखी होकर चले गए। फिर उन्होंने अपने शिष्य को बोला आप बाहर आ जाओ, तो शिष्य बाहर आ गए तो बोले क्या करना क्या निश्चय किया, तो बोले शिष्य भी थोड़ा घबरा गए, बोले वो मेरी माँ, बोले वो माँ नहीं वो माया है, उसके चक्कर मत पड़ो यही रहो। और बहुत ही घटनाएं हैं भक्ति सिन्हा महाराज जी की, और एक बार जैसे उनको वो डरते नहीं थे किसी से, एक बार वो प्रवचन दे रहे थे तो उनके सामने बैठे कोई व्यक्ति बातें कर रहे थे, तो प्रवचन दे रहे थे तुरंत चुप हो गए, बोले तुम क्या सोचते हो तुम मुझे कुछ धन का दान देते हो, धन का दान देकर तुमने मुझे खरीद लिया, तुम प्रवचन में बैठे हो तुम चुपचाप हरी कथा सुनो, ऐसा नहीं कि तुम कुछ धन का दान देते हो तुम कुछ भी कर सकते हो, बोले आप यहाँ पे बैठ के चुपचाप सुनिए। और एक बार उनके पास मदन मोहन मालवीय जी आए, मदन मोहन मालवीय काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और काफी अच्छे खानदान से, मदन मोहन मालवीय जी ने भक्ति सिद्धांत महाराज से बोला कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उन्होंने ये देखा बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियां थे, बोले ठीक है आप जरा उस व्यक्ति से पास चले जाइए, तो उस व्यक्ति के पास गए तो बोला ठीक है आप यहाँ आइए जरा कुछ बर्तन धुलवाइए, तो उन्हें बर्तन बर्तन धोए और फिर वापस जब आए फिर भक्ति सिद्धांत महाराज ने पूछा हाँ जी कोई प्रश्न है, बोले नहीं मेरे सारे प्रश्न जवाब। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ये स्थापना करना चाहते थे, वो क्या कहते थे कि अगर आप कृष्ण को देखना चाहते हो तो इतनी अच्छी सेवा करो कि स्वयं कृष्ण आपको दर्शन दे। शिला प्रभुपाद अक्सर रिपोर्ट किया करते थे कि अक्सर लोग बोलते हैं कि भगवान को देखना चाहता हूँ देखना चाहता हूँ, तो शिला प्रभुपाद कहते हैं मेरे गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि अगर आप कृष्ण को देखना चाहते हो तो इतनी सेवा करो कि स्वयं कृष्ण आपको देखने आए। तो ये थे भक्ति सिद्धांत महाराज और आज हम सबको कोई शिष्य को प्रणाम करता था तो वापसी में क्या बोलते थे, दासो अस्मि, कि मैं तुम्हारा दास हूं। तो आज हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए भक्तिवृंद महाराज जी से कि हम सबको इतनी शक्ति दें कि हम भी श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञाओं को दृढ़ता से पालन कर सके, हमारे अंदर भी इतना जोश आए कि हम प्रचार कर सके। भक्तिवृंद महाराज जी कहते थे कि अगर आपके अंदर जीवन है तो आप प्रचार करेंगे, यानी कि जो व्यक्ति प्रचार नहीं कर रहा वो मरे हुए के समान, और वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति प्रचार नहीं कर रहा वो सबसे बड़ी हिंसा कर रहा है। तो हम सबको भक्तिवृंद महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इतनी शक्ति दें कि हम सब मिलकर श्री प्रभुपाद जी के आंदोलन को खूब आगे बढ़ाए और श्री प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार प्रचार करने में जुड़े रहे। जोएंगे भक्तिवृंद महाराज को स्वामी महाराज की भक्तिवृंद आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जन शिला प्रभुपाद की अनंत कोटि कृष्ण वृंद की निदाई बोल विमानंदे प्रभु की।
तो साधन भक्ति जो है वो उसका ये पंखा कहते हैं बात कर रहा है ओम ज्ञान तिमरंगस्य ज्ञानांजना शलाका चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरा क्या क्या बताया था, चलो बता सकते क्योंकि तो याद नहीं है क्या हो क्या बोला था, क्या बताया था बताइए लास्ट टाइम लिखा हुआ बस पांचांग भक्ति के बारे में बताया था फिर भक्ति के अलग अलग स्थितियां बनाए थे स्टेजेस आदो श्रद्धा तथा साधु संग बोला था
ये बता रहा इसमें आप अनंत निर्देश का बता रहा
हाँ वहीं से आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा की व्यवस्था, श्रद्धा से भक्ति प्रारंभ होती है। और इस श्रद्धा की स्थिति में पहुंचने के लिए कई जन्मों की भक्ति की आवश्यकता है। यानी कि श्रद्धा का अर्थ यह है कि मतलब आकर्षण, जितना आपने साधन भक्ति में समय बिताया होगा पिछले जन्म में, या जितना आपने गंभीरता से साधन भक्ति की होगी, उतना आकर्षण आपका होगा इस जन्म में कृष्ण के वहां, यानी साधन भक्ति के। साधन भक्ति की गंभीरता का पता चलता है पिछले जन्म की भक्ति से। अगर इस जन्म में आपका आकर्षण कम है साधन भक्ति में, तपस्या नहीं करना चाहते आप और साधन भक्ति ने वो पालन करने में आलस होता है, तो इसका मतलब पिछले जन्म में उतनी ही हमने भक्ति की है, क्योंकि उतना आकर्षण नहीं। तो इसलिए साधन भक्ति में आकर्षण बढ़ाने का तरीका यही है केवल कि हम लोग उन भक्तों का आश्रय ले, सहारा ले, जो इस साधन भक्ति में आगे बढ़े चढ़े और उनके सानिध्य में संग रहकर हम लोग भी और गंभीरता से भक्ति कर सकते हैं। साधन भक्ति को इसलिए दो भागों में बांटा गया, हमने बताया था, यह वैदिक साधन भक्ति और रागनुगा साधन भक्ति। वैदिक साधन भक्ति आदव श्रद्धा तथा साधु संग अथवा भजन क्रिया तथो नानर्थ निवृत्ति तथो निष्ठा रचित तथा वैदिक साधन भक्ति हो और आगे चलकर रागनुगा साधन भक्ति, क्रम यही है, शुरुआत ऐसे ही होती है। और जब कोई निष्ठा की स्थिति पर पहुंचता है जहाँ पर अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, यानी कम से कम अनर्थ जो है हमें सताते हैं, कौन कौन से अनर्थ सताते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो इनके कारण जो है हमें भजन क्रिया में बाधा आती है ना, महामंत्र का जप हम ठीक नहीं कर पाते हैं, साधन भक्ति नियमों का पालन करते हैं, तो ये अनर्थ हमें सताते रहते हैं। निष्ठा की स्थिति में जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें यह अनर्थ सताते रहते हैं, फिर अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। अगर हम साधन भक्ति में लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं दृढ़ता पूर्वक और मार्ग से भटकते नहीं है भक्तों के संग में रहकर, तो हमें अनर्थों से निवृत्ति प्राप्त होती है, जिसके कारण हमारी निष्ठा बढ़ती है। जितने हम अनर्थों से निवृत्त होंगे उतने ही हमारी निष्ठा बढ़ेगी, जितनी ज्यादा आपकी अनर्थ निवृत्ति होगी उतनी ज्यादा आपकी निष्ठा बढ़ेगी। यह इसका रहस्य, यानी कि दूसरे तरीके से इसको ऐसा समझे कि जितनी आपकी निष्ठा बढ़ रही है अगर, तो उसका मतलब आपके अनर्थ निवृत्ति हो रही है, स्थिर होते जा रहे हैं आप। उसके बाद फिर आता है रुचि की अवस्था, लोभ, हमने बताया था लोभ वो अवस्था है, लालसा होती है। अब वास्तव में आपके हृदय में आकर्षण जागृत होता है, रुचि जागृत होती है, टेस्ट जिसे कहते हैं। टेस्ट का मतलब यह है कि अब आप और जो है श्रवण कीर्तन में और आकर्षण आपका बढ़ जाता है, श्रवण कीर्तन के बगैर आप रह नहीं सकते, और एक माला और कर लें और हरिनाम ले लें और श्रवण कर लें, इस समय और आपको रुचि आने लगती है, टेस्ट। अभी भी टेस्ट नहीं है, हमें कोई महामंत्र का जब करना एक बहुत बड़ी तपस्या है, माला करना, कोई टेस्ट नहीं है, क्योंकि नीरस है, फीका है ना, लेकिन रुचि जब आ जाती है तो हम लोग का अंदर टेस्ट पैदा हो जाता है, रुचि पैदा हो जाती है, और फिर हम लोग बड़े लोभ जागृत होता है। लोभ किसके और लोभ जागृत होता है, ये बहुत अच्छा, लोभ जागृत होता है भक्ति रस की ओर। अगर आपका जो है वैकुंठ का भाव है तो वैकुंठ के पार्षदों की ओर आकर्षण जागृत होगा, और अगर आपका आकर्षण ब्रज की ओर है तो ब्रज की ओर आकर्षण जागृत होगा। लोभ या तो वैकुंठ की ओर होगा, लोभ या तो ब्रज की ओर होगा, और वहां से आपका जो है साधन भक्ति के दो भाग हो जाते हैं, वैदिक साधन भक्ति और फिर रागनुगा साधन भक्ति। वैदिक साधन भक्ति का मतलब ये है, जो वैदिक साधन भक्त के भक्त भक्ति के उदाहरण है कौन कौन है, नारद मुनि, जैसे वैकुंठ के द्वारपाल, जय विजय, ये सब वैदिक भक्ति करते हैं, लेकिन प्रेम की अवस्था में, वैदिक भक्ति लोग प्रेम की अवस्था में करते हैं। और तो लोभ जागृत होता है जानने के लिए, नारद जी की कैसे सेवा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की कैसे सेवा करते हैं, भगवान की कैसे सेवा करते हैं, उसको जानने का हम लोग और प्रयास करते हैं, उत्सुकता रहती है, लोभ रहता है, लौल्यम रहता है, लौल्य होना बहुत जरूरी है, लालसा। नरोत्तम नाथ ठाकुर ने बताया था कई प्रकार की प्रार्थनाएं लिखी, बताया था एक प्रार्थना करके किताब है। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में ऐसी कुछ किताबें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण किताब है गौड़िया वैष्णव के लिए। प्रभुपाद जी किताबें अगर पढ़ लें अच्छी तरह, उसके बाद दो किताबें बहुत महत्वपूर्ण है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, रतन दास ठाकुर के द्वारा लिखित, एक है प्रेम भक्ति चंद्रिका और दूसरा है प्रार्थना। बाबा जी महाराज कहते थे अगर आपके पास दो आना हो या दो रुपए हो तो किताब दुकान में जाओ और ये दो किताबें खरीद लो, प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना। रतन दास ठाकुर ने इसमें साधकों के लिए वैदिक शास्त्रों का वैदिक वाङ्मय से जो हमें संपूर्ण ज्ञान दिया है। प्रार्थनाएं बहुत आवश्यक है भक्तों के लिए। प्रार्थना होती है कई प्रकार की, एक होती है दैन्य बोधि का प्रार्थना। दैन्य बोधि का प्रार्थना में अपने को दीनहीन समझकर भक्त प्रार्थना करता है, मौसम आपतिता प्रभु ना पाए दया, है ना, श्री कृष्ण चैतन्य दया करो। ये रतन दास ठाकुर के जो किताब से लिया गया प्रार्थना है, प्रार्थना किताब, प्रार्थना जो है उसमें बहुत सारे भजन है दैन्य बोधि का, अपने को बड़ा दीनहीन मानकर। और एक और आता है जिसमें प्रार्थना करता है भक्त कि जिस तरह आकर्षण एक पुरुष और स्त्री के बीच में होता है, ये युवक और युवती के बीच में जो आकर्षण होता है, ऐसा मेरा भी आकर्षण हो, ऐसा मेरा भी मन आपकी ओर लगे, कृष्ण से प्रार्थना करता है। और जब उन्नत होता है भक्त, फिर आती है लालसामय प्रार्थना। लालसामय प्रार्थना होती है जब आप रागन का साधन भक्ति करने लगते हैं, लालसामय, या फिर जैसे लालसामय प्रार्थना उसको कहते हैं लौल्यम
कृष्ण लालसामय प्रार्थना।
हाँ जी,
तुलसी आरती,
हाँ वो भी एक लालसामय प्रार्थना है, लालसामय प्रार्थना है। लेकिन हम लोग प्रारंभिक अवस्था में भी प्रभुपाद की कृपा है कि प्राकृत भक्त उसको गाते हैं, यही निवेदन धन शकीर अनुगत का, ये लालसामय प्रार्थना सही बात है। इस तरह आप कह सकते हैं लालसामय प्रार्थना का अर्थ क्या है, कृष्ण भक्ति रस भाविता पति क्रियताम कुतो विलभ्यते तत्र लौल्यम अपि एकल मूल्यम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस जो है वो करोड़ों जन्मों की सुकृति से प्राप्त नहीं होता। कृष्ण भक्ति रस प्राप्त करने के लिए आपको क्या किस चीज की आवश्यकता है, लौल्यम अपि एकल मूल्यम, लौल्य लालसा ही एक मूल्य है जिसके द्वारा आप इस कृष्ण भक्ति रस को प्राप्त कर सकते हैं, रस कृष्ण भक्ति रस। तो वैदिक साधन में जो लगे हुए भक्त हैं वो वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं, यानी कि रुचि के बाद आसक्ति की अवस्था आती है। आसक्ति की अवस्था में भक्त अपने स्वरूप के बारे में आभास होने लगता है उसको, उसको पता चलता है कि उसका नाम क्या है, उसको कौन से वस्त्र पहने हैं। वास्तव में अभी वो अंतरंग रूप से अपने स्वरूप में वो सेवा नहीं कर रहा अभी, लेकिन उसको अब आभास होने लगा कि मैं कौन। आसक्ति की अवस्था ही होती है और इस तरह से उसका आकर्षण एक विशेष पार्षद के प्रति होता है, भगवान के पार्षद के प्रति होता है। और जब इस प्रकार का आकर्षण जागृत हो जाता है तो फिर वो इस संसार में नहीं रह सकता, फिर वो धाम जाने जाना है उसने। आसक्ति की अवस्था, एक आसक्ति हुई वैकुंठ धाम में जाने की, और उसके बाद आसक्ति के बाद भाव उदय होता है। भाव मतलब प्रेम, प्रेमांकुर, भाव प्रकट होता है हृदय में। भाव का मतलब होता है जैसे सूर्य जब उदय होता है तो अंधकार दूर हो जाता है, अज्ञानता समाप्त हो जाती है। इसलिए रतन दास ठाकुर कहते हैं प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश हो जाती। तो ये है अविद्या, अविद्या मतलब देहात्म बुद्धि बिल्कुल समाप्त हो जाती है, देहात्म बुद्धि के द्वारा जनित अंधकार जो है वो नष्ट हो जाता है और प्रेमांकुर, प्रेमांकुरित हो जाता है आपके हृदय में, और इस तरह आप वैकुंठ की ओर जाने लगते हैं भाव और फिर प्रेम की अवस्था में। जहाँ पर भाव की अवस्था में क्या होता है, भाव की अवस्था में आप वास्तव में फिर अंतर रूप से सेवा करने लगते हैं, इस शरीर में रहकर ही आप अंदर से सेवा कर रहे हैं भगवान अपने स्वरूप में। बाहर ऐसा लग रहा होगा कि वो माला कर रहे हैं, जैसे आप माला कर रहे हैं आपके गुरु भी बैठ के माला कर रहे होंगे आपके साथ, तो आपको लगा होगा कि माला कर रहे हैं, मैं भी माला कर रहा हूं, क्या है। लेकिन वो अंतरंग अपने स्वरूप में वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, हरे नाम लेते हुए, नाम लेते हैं लीला की स्फूर्ति होती है उनको, और अपने स्वरूप में स्थित होकर वो भगवान की सेवा करते हैं पार्षदों के माध्यम से। तो उसको कहते हैं भाव की अवस्था। तो उसके बाद भाव की अवस्था से आगे जब जब परिपक्व हो जाता है भाव और प्रेम की अवस्था पहुंचते हैं, तो फिर बस वो प्रेमी भक्त जो है भगवान के धाम में प्रवेश करता है, सूर और सूक्ष्म शरीर को यहीं पर त्याग कर। सूर्य शरीर होता है पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, मन बुद्धि और अहंकार सूक्ष्म शरीर को यहीं पर त्याग कर अपने स्वरूप सिद्ध स्वरूप में जो है वो वैकुंठ धाम में प्रवेश कर। और जो रागानुगा मार्ग में है यानी कि जो ब्रज के और आकर्षण इनका या ब्रज का जिनका स्वरूप है या कृष्ण के सखा है या फिर कृष्ण इसकी जैसे गोपियां हैं वो है या ग्वाल बाल है या गाय चलाने वाली गाय है और वहाँ के वृक्ष है पशु पक्षी है कोई भी स्वरूप हो सकता है ब्रज का। तो ब्रज का कोई भी स्वरूप होगा उस स्वरूप में वो अंतरंग स्वरूप में वो क्या करते हैं आसक्ति की अवस्था में ऐसे भक्त को पता चलने लगता है कि वो कौन है उसको जानकारी नहीं होती। और भाव की अवस्था में वो अंतरंग रूप में अंतरंग स्वरूप रूप में और अंतरंग सिद्ध स्वरूप में वो राधा कृष्ण की सेवा करता जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को हमने बताया था पिछली बार कैसे उनके जब उनके पास विट्ठलनाथ जी आते थे वल्लभाचार्य के पुत्र आते थे उनसे मिलने के लिए और उनसे काफी अच्छा स्थानीय संबंध था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या अपने स्वरूप सिद्ध अवस्था में लीला स्मरण कर रहे हैं राधा रानी को उन्होंने खीर का भोग लगाया और खीर प्रसाद ज्यादा ले लिया उनका पेट खराब हो गया वैद्य जी आए उन्होंने कहा कि आपने खीर खा ली इसलिए आपका पेट खराब है दूध ज्यादा के लिए दूध है ना खीर ज्यादा खा लिया आपने इसलिए पेट खराब हो गया आपका। तो वो विट्ठला जी कहते हैं तो खीर क्या दो दिन में एक बार तो छाछ पीते हैं 200 ग्राम उसमें नमक डालकर कभी कभी तो वो भी नहीं खाते हैं या नहीं पीते। तो जब वो वैद्य जी चले गए तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा नहीं वो वैद्य ठीक बोल रहा था मैंने वास्तव में खीर खा लिया था राधा रानी को भोग लगा के ज्यादा ले लिया था मैंने अपने स्वरूप से व्यवस्था। तो वो भाव की अवस्था में होता है यानी किसी शरीर में रहकर आप अपने स्वरूप में राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। इसलिए तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब उनकी गर्मी पड़ती थी अप्रैल मई के महीने में भी इतनी गर्मी में भी राधा कुंड के तट पर बैठकर वो महामंत्र का जप कर रहे हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा कि बाहर क्या हो रहा है सुनबुल नहीं शरीर के साथ क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं पात्रास प्रशास्त कौन थे आशीतोष न सुख दुख का आगाम पाई नाम तिक्ष भारत भगवान तो कह रहे सहन करना सीखो सुख और दुख जैसे वो सर्दी और गर्मी के समान है लेकिन जो प्रेमी भक्त हैं भगवान के उनके हृदय प्रेम जागृत हो गया है उनको सहन करने की आवश्यकता नहीं है उनके लिए तपस्या नहीं है ये तो भगवान जो है प्राकृत भक्तों को समझा रहे हैं श्लोक के द्वारा लेकिन भगवान के जो भक्त हैं विशुद्ध भक्त हैं उनके प्रेम जागृत हो गया भगवान के लिए उनको तो कोई तपस्या ही नहीं है वो तो आनंद में वित्त भाव विभोर है क्योंकि शरीर की सुध-बुध नहीं है तो तपस्या क्या है वो तो आनंद ले रहे हैं ये माला चलती जा रही है पता नहीं कितनी माला हो गई है ना। और इस तरह से जो है वो प्रेम की अवस्था पहुंचते हैं और अपने भाव में स्थित होकर अपने स्वरूप में इस शरीर को यहाँ छोड़कर नित्य लीला में प्रविष्ट होते हैं जिसको कहते हैं रागानुगा साधन वाले भक्त जो है रागानुगा साधन वाले भक्त भी जो है ब्रज में किसी भगवान के पार्षद से उनका आकर्षण जागृत होता है जो माधुरी भाव में होता है उसका आकर्षण गोपियों के प्रति होता है किसी एक गोपी के प्रति होता है मंजरियों के प्रति होता है किसी एक मंजरी के प्रति होता है हम लोग रूपानुग वैष्णव है तो रूप मंजरी के ही सब अनुगत है रूप मंजरी से प्रार्थना करते हैं और इस तरह हम लोग फिर वो भक्त जो है उस भाव में भगवान कृष्ण की लीला में प्रवेश करता राधा कृष्ण की लीला में या सख्य भाव में या सख्य रस में तो या तो सुबल सखा के प्रति आकर्षण या मधुमंगल के प्रति आकर्षण श्रीराम ये लोग कैसे सेवा कर रहे हैं इन सब के बारे में उनको अधिक जानकारी होने लगती है उस भक्त को और वैसे ही ये सेवा करने की लालसा करते हैं और सेवा करते भी हैं स्वरूप में ऐसे अलग अलग जितने भी रस है सख्य रस माधुर्य रस वात्सल्य रस नंद महाराज माता यशोदा की तरह वात्सल्य भाव जागृत होता है और कृष्ण को एक बच्चे के रूप में देखने लगते हैं वात्सल्य भाव जैसे वल्लभाचार्य संप्रदाय में जिसको पुष्टि मार्ग कहा जाता है उसमें वो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं वात्सल्य भाव तो वात्सल्य भाव जो नंद महाराज माता यशोदा उनकी तरह सेवा करना चाहते हैं तो ऐसा करते करते क्या होता है स्वरूप सिद्ध अवस्था में वो ब्रज में प्रवेश करता तो दो मार्ग है रागानुगा साधन और रागानुगा साधना और वैदिक साधना लेकिन रुचि से पहले ये नहीं होने वाला है रुचि ये पहली अवस्था है जहां पर आपको संकेत मिलने लगेगा कि आप आकर्षण वैकुंठ की ओर है या ब्रज की ओर है, और ब्रज की ओर है तब रागानुगा साधन भक्ति रागानुगा साधना भक्ति करने लगेंगे। रागानुगा साधना भक्ति करेंगे एक रागात्मिका भक्त के अनुगत होकर। रागात्मिका भक्त उसको कहा जाता है जो नित्य सिद्ध परिकर है ब्रज के, जो सिद्ध है ब्रज के भक्त, जैसे नंद महाराज, माता यशोदा, ब्रजवासी जितने भी हैं उनको रागात्मिका भक्त कहा जाता है। और रागानुगा वो पूर्णतम अवस्था नहीं है, रागानुगा साधना है, वही साधना है। कई बार बोलते हैं कि रागानुगा भक्ति कर रहा है, तो रागानुगा भक्ति वो कर रहा है तो वो परिपक्व नहीं हुआ है, वो भी साधना ही कर रहा है, लेकिन वो है रुचि की अवस्था में, कम से कम वो निष्ठा के साथ को भी पार कर चुका है, इसलिए उसको ये योग्यता प्राप्त हुई है रागानुगा साधन भक्ति करने की। और वो रागात्मिक भक्त का आश्रय लेता है गुरु के माध्यम से, तो गुरु जो है या गुरु है वो हमें मार्गदर्शन देता है, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। वो गुरु जो है हमें, अगर हमारा वैकुंठ का भाव है तो वैकुंठ की ओर ले आते हैं, और ब्रज का भाव है तो ब्रज की ओर ले आते हैं, इस तरह से। फिर उसके बाद क्या बताया, यही है, अथा आसक्ति ततो भाव तथा प्रेमा भी उदंचति साधका नाम अयम प्रेमणः प्रादुर्भवेत भवेत कर्मः। तो ये जो है, ये क्रम का मतलब क्या है, ये क्रमशः होता है, तो जंप नहीं लगा सकते आप। जब श्रद्धा के सर पर है तो सोचे हम सीधा प्रेम में पहुंच जाएंगे, आज श्रद्धा के सर पर है, आज यहाँ श्रद्धा के सर पर भाव आ गया, ऐसे नहीं आएगा, इतना चीप नहीं। यानी कि आप साधन भक्ति में आप जब निष्ठा के स्तर पर पहुंचते हैं, और निष्ठा के स्तर से फिर आप भाव की अवस्था में पहुंचते हैं और रागानुगा साधन भक्ति करने लगते हैं, इस सब अवस्थाओं में हमें एक शुद्ध भक्ति कृपा चाहिए। भक्ति प्रारंभ करने के लिए भी, श्रद्धा के स्तर पर भक्ति प्रारंभ करने के लिए भी आपको गुरु पाद आश्रय लेना होता है, भक्तों का संग आवश्यक है, साधु संग करना पड़ता है, भक्तों की कृपा लेनी होती है। और जब हम निष्ठा के स्तर पर पहुंचते हैं, रुचि जागृत होती है, उस अवस्था में भी शुद्ध भक्ति कृपा चाहिए। साधन भक्ति से अगर हम भाव भक्ति में जा रहे हैं तो साधन भक्ति, तो भक्ति जो है वो तीन प्रकार की, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो रूप गोस्वामी ने इन सब तीन प्रकार की भक्ति के छह लक्षण बताए, छह लक्षण बताए। साधन भक्ति का दो लक्षण क्या बताया, पहला दो लक्षण बताया, अगर आप निष्ठा की अवस्था में हैं तो दो लक्षण प्रकट होते हैं, इतना स्पष्ट है भक्ति रसायन सुंदर में कि आपको कोई धोखा दे नहीं सकता है। लोग सोचे कि हाँ बेवकूफ बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि बहुत बड़े भक्त है ना, सारे भाव प्रकट कर रहे हैं, लेकिन रूप गोस्वामी के भक्ति रसायन सुंदर में जो दिए गए लक्षण, अगर वो लक्षण नहीं है तो समझ लो कि ये अभी निष्ठा के स्तर पर नहीं है, भले उसको 50 साल अगर। ये लक्षण जागृत होने चाहिए। पहला लक्षण क्या है, पहला लक्षण है क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि का मतलब होता है समस्त प्रकार के क्लेश से जो है छुटकारा प्राप्त होता है, समस्त प्रकार के क्लेश से छुटकारा प्राप्त होता है, क्लेश अग्नि कहते हैं उसको। क्लेश अग्नि, जो क्लेश तीन प्रकार के होते हैं, अभी समझता नहीं क्योंकि इसको चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है, मैं सिर्फ संक्षेप में बता रहा हूँ। क्लेश अग्नि में जो है पाप है, और पाप या अविद्या, पाप अविद्या, पाप का मतलब पाप, और बीज, बीज का मतलब भौतिक इच्छाएं, और अविद्या, अविद्या का मतलब होता है यानी कि जो कि मूल कारण है कि अपने को शरीर समझ लेना। तो हर प्रकार के क्लेश से छुटकारा मिल जाता है भक्त को, साधन भक्ति की अगर अवस्था में है, निष्ठा की अवस्था में है, तो उसको क्लेश अग्नि की अवस्था में क्लेश अग्नि का लक्षण प्रकट होता है, जिसमें वो समस्त प्रकार के क्लेश से वो छुटकारा प्राप्त करता है। और शुभदा दूसरा लक्षण है। शुभदा में क्या होता है, वो निष्ठा की अवस्था में है, जैसे हमने पहले बताया, इसमें चार लक्षण होते हैं शुभदा में। शुभदा का मतलब है वो सबको आकर्षित करने वाला है और सबको लाभ पहुंचाने वाला है, दूसरा ये, और उसके अंदर सारे अच्छे गुण जागृत हो जाते हैं। सर्वई गुणे तत्र समासते सुरा यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन, सर्वई गुणे तत्र समासते सुरा। भागवत बताया ना, जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें सारे अच्छे गुण जागृत हो जाते हैं, देवताओं के सारे गुण जो है उनमें आ जाते हैं। हर वो अभक्त से कुतो महा गुणा, लेकिन जो कृष्ण के भक्त नहीं उनमें कौन से अच्छे गुण हो सकते हैं। मनोरथ नास्ति धाव तो भाई, वो तो मन के रथ पर आरूढ़ हो गए, मतलब बस उसी में बह रहे हैं, उसी में जा रहे हैं। मनोरथ नास्ति धाव तो भाई, उनमें कोई अच्छे गुण नहीं हो सकते। तो इस तरह से ये सारा जो है इसमें बताया, चार जैसे शुद्धा के जो लक्षण बताए, और उसके बाद ये साधन भक्ति के दो लक्षण, फिर भाव भक्ति के दो लक्षण। भाव भक्ति के दो लक्षण क्या है? एक बताया मोक्ष लघुताकृत। मोक्ष लघुताकृत का मतलब है कि मुक्ति को बहुत तुच्छ मानने लगता है भक्त, भगवान के प्रति इतना उसके अंदर भाव जागृत हो जाता है, जब प्रेम उदय हो जाता है तो मुक्ति को तुच्छ मांगता है। कई बल्लम नरक आए थे, जिस तरह से पूर्वदान सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भगवान के साथ एकत्व की प्राप्ति करना जो है नर्क के समान है, नर्क में जाने के समान है, तो मुक्ति की इच्छा नहीं करता है। बिल्लम ठाकुर क्या कहते हैं? बिल्लम ठाकुर कहते हैं, याद नहीं आ रहा श्लोक मुझे, उसमें बिल्लम ठाकुर कहते हैं कि वास्तव में भक्त जो है वो अंदर सेवा में इतना ज्यादा व्यस्त है, विग्रह की सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में, कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि ये सब द्वार पे खड़े हैं हाथ जोड़कर, और वो सेवा करना चाहते हैं हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हुए हैं। और भक्त कहता है कि अभी तुम वहीं रहो, थोड़ा वेट करो, मैं अभी थोड़ा सेवा कर रहा हूँ, द्वार पे खड़े रहो, अंदर मत आना। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि जो है भक्त के लिए हमेशा तैयार है उसकी सेवा करने के लिए, लेकिन भक्त जो है उनको द्वार पे खड़ा रखता है। तो यानी कि क्या है कि भक्त जो है उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है भुक्ति मुक्ति सिद्धि को, तो इस कारण से ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि का उपयोग ही नहीं करते हैं भक्त। सुदुर्लभ, बहुत ही मुश्किल है, कठिन है इसको प्राप्त करना, भाव भक्ति की अवस्था को प्राप्त करना। बिना शुद्ध भक्ति कृपा के आप इस भाव भक्ति की अवस्था में पहुंच ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा दुर्लभ है। यानी कि अपने प्रयास से हम इस अवस्था में नहीं पहुंच सकते हैं। और दूसरा बताया इसमें कि कृष्ण जो है इस अवस्था को प्रदान करने के लिए थोड़ा सा आनाकानी करते हैं, ये अवस्था आसानी से देते नहीं है, बहुत ज्यादा दुर्लभतर जीव होते हैं, दुर्लभतम जीव होते हैं जो इस अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि इसमें भगवान को फिर बनना पड़ता है। जैसे पांडवों के लिए कृष्ण जो है संदेश भाग बनकर दूर बनकर गए, हस्तिनापुर दिल्ली आए प्रार्थना करने के लिए, एक दूत बनकर कि पांडवों को आप बहन को कम से कम 5 गांव तो दे दें, है ना। तो इस तरह से भगवान देते नहीं, इसलिए तो भगवान सब बनने लगते हैं फिर। और प्रेम भक्ति के भी दो लक्षण है, एक है शानदार आनंद विशेष आत्मा, और उसके बाद दूसरा है श्री कृष्ण आकर्षण। शानदार आनंद विशेष आत्मा का मतलब यह है कि भगवान जो है प्रेम में, कृष्ण इतना प्रेम बांध लेता है भगवान को, भक्त जो है प्रेम इतना बांध लेता है कि अब उसकी डेंसिटी जो है, यानी कि उसकी जो गहराई है प्रेम की, गहराई इतनी बढ़ जाती है कि वहां पर जो है इंद्र तृप्ति की रंच मात्र भी आभास तक नहीं होता है इंद्र तृप्ति का। उस भक्त को इंद्र तृप्ति का रंच मात्र भी आभास तक नहीं होता है, उसको यही नहीं पता कि इंद्र तृप्ति क्या होती है, वो प्रेम में डूबा हुआ। जैसे बताया गया, जैसे एक लोहे का, अगर समझ लो एक बहुत बड़ा हुआ है ब्लॉक, लोहे का, जैसे समझ लीजिए ये पूरा लोहे का बना हुआ है पत्थर जैसा, और उसमें आप एक पिन डालें सुई, तो उसको असर करेगा कुछ? तो ऐसे ही कि प्रेमी भक्त जो है उसका प्रेम इतना ज्यादा कंडेंस हो चुका होता है, जैसे कंडेंस मिल्क बोलते हैं ना, इतना कंडेंस हो चुका होता है कि आप कोई संभावना ही रहने आती है कि इंद्र तृप्ति प्रवेश कर सके। और दूसरा क्या है, श्री कृष्ण आकर्षण, इसमें जो है कृष्ण और ज्यादा प्रेम में बनने लगते हैं। यानी कि अब अंतर क्या है, भाव में भी हमने बताया कि वो प्रेम बनने लगते हैं और प्रेम भक्ति में भी बता रहे हैं बनने लगते हैं, तो अंतर यह है कि भाव भक्ति की अवस्था में भगवान जो है बनना शुरू होते हैं, उनको मानना शुरू करते हैं, असर है उनको मानना शुरू कर रहे हैं, लेकिन प्रेम भक्ति की अवस्था में वो बन चुके होते हैं, हमारे प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, कृष्ण हमारे पूरे काबू में हो जाते हैं। ये केवल हमारा वैष्णव सिद्धांत ही है या गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है जिसमें हम लोग कृष्ण को, भगवान को अपने प्रेम में बांध लेते हैं, लेकिन वैकुंठ में ये नहीं अवसर प्राप्त होता। आप प्रेम हो जरूर सकता है भगवान से, लेकिन उनको आप बांध नहीं सकते, बातें शुद्ध कृष्ण को बांध रही है जैसे, वो तो वाकई में बांध के दिखाया। तो कृष्ण जो है आपके लिए सेवा के लिए भागेंगे पीछे पीछे, आप जो सोचेंगे ना, आप अगर थोड़ी सी आपने इच्छा कर ली कुछ, तो कृष्ण वो इच्छा पूरी करके रहेंगे आपके लिए। तो ये प्रेम भक्त का लक्षण, तो जो शुद्ध भक्त इच्छा करेगा कृष्ण को पूरा करना ही होगा।
तो शुद्ध भक्त जो है वो तो सेवा करते ही है, लेकिन प्रतियोगिता चलने लगती है फिर भक्त और भगवान के बीच में। कृष्ण जो है अपने भक्ति सेवा करना चाहते हैं और भक्त जो है कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन। लेकिन अधिकांश जो है भक्त विजयी होता है।